तेज कर देंगे,
क्लीन कर देंगे।
आज का इंट्रोडक्शन, फोर्थ दिसंबर ना, टुडे इज नेवी डे ना, फोर्थ दिसंबर। आज प्रधानमंत्री, अभी न्यूज में आ रहा था कि शाम को दुर्ग जाएंगे ना, जहाँ राजकोट, यानी जहाँ पर वो मेरे ख्याल से वो शिवाजी महाराज का किला है, वहाँ जाकर नेवी वो करेंगे। तो तभी मैंने न्यूज में सुना। तो टुडे इज फोर्थ दिसंबर 2023, टाइम इज अबाउट 5:25 PM इन लखनऊ। अगेन आई एम सर विद मी अंकित सर ऑन बिहाफ ऑफ अमित लाइन शूट, वी आर गोइंग टू प्रेजेंट आवर थर्ड लेक्चर ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 ना, दिस इज आवर थर्ड लेक्चर। एंड इन लास्ट लेक्चर्स, पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने कुछ चीज़ें बताई थी, की थी, क्योंकि ये एकदम अलग सी चीज़ है तो ये दिल्ली और दो तीन और स्टेट्स में, मगर इन सब्सटेंस आर्बिट्रेशन हम सबको आना चाहिए, क्योंकि ADR का पार्ट है और ADR CPC में, CPC हर जगह है। तो ADR के प्रोसेस को समझने के लिए हम लोग को आर्बिट्रेशन समझना था, और आर्बिट्रेशन इज एन एडजुडिकेशन बाय प्राइवेट पर्सन ना। जब जज किसी मैटर को एडजुडिकेट करता है तो वो हम लोग उसको बोलते हैं लिटिगेशन। लिटिगेशन में जज एडजुडिकेट करते हैं सिविल कोर्ट में, और आर्बिट्रेशन में पार्टीज जब रेफर कर देती हैं मैटर को अपने कंसेंट से, तो फिर वहाँ पर जो प्राइवेट लिटिगेशंस कहते हैं, और वहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, यानी जो एडमिनिस्टर करता है, जो एडजुडिकेट करता है, वो प्राइवेट पर्सन होता है। दैट प्राइवेट पर्सन इज कॉल्ड आर्बिट्रेटर। जनरली जो आर्बिट्रेटर होता है वो हमारी आपकी इच्छा पर चुना जाता है, दिमाग में एकदम रखिएगा। कोई ऐसा नहीं कि उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत हो, LLB हो, ये सब कुछ नहीं। पार्टीज आर फ्री टू चूज आर्बिट्रेटर ऑफ देयर चॉइस, सेक्शन 10। पार्टीज के पास फ्रीडम होती है कि वो किसी को भी आर्बिट्रेटर चुन सकते हैं। आर्बिट्रेटर कोशिश ये की जाती है कि ऑड नंबर्स में हो, या तो सोल हो, 1, 3, 5, इस तरह का कोशिश की जाती है। अगर 3 होना है तो हर पार्टी एक एक चुन देती है, और फिर वो दोनों आर्बिट्रेटर, सेक्शन 11 कहता है, एक थर्ड आर्बिट्रेटर, प्रिजाइडिंग आर्बिट्रेटर को चुन देते हैं। अगर पार्टीज आर्बिट्रेटर न चुन पा रही हैं, फेल हो रही हैं, और डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन है तो हाई कोर्ट, और अगर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन है तो सुप्रीम कोर्ट आर्बिट्रेटर अपॉइंट करती है। और इसके लिए उन्होंने पूरा आर्बिट्रेशन का पैनल बना रखा है, और 2019 से तो स्पेसिफिकली Part 1A ऐड किया गया है, और आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया बन गई है। उसमें पूरा आर्बिट्रेटर्स अपॉइंट होंगे, एलिजिबिलिटी होगी, वो पूरी लिस्ट बनी रहेगी सुप्रीम कोर्ट इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के लिए कमर्शियल, और डोमेस्टिक के लिए हाई कोर्ट, वो पूरी लिस्ट बनाएगी, एलिजिबल होंगे, परमानेंट फोरम होगा। तो इस तरह से हम लोग देख रहे थे कि ये पूरी हमारी प्राइवेट विल पे है। और आर्बिट्रेशन किस मैटर में होता है, तो सेक्शन 7 आप लोगों ने पढ़ा था ना, When there exists a valid arbitration clause, then court refers such persons for arbitration. अगर आर्बिट्रेशन क्लॉज है तो पार्टी को कहाँ भेज दो, आर्बिट्रेशन। जनरली आर्बिट्रेशन कॉमर्शियल मैटर्स में होता है, किस मैटर्स में होता है, कॉमर्शियल, मगर ये कन्फाइंड नहीं है। स्टैट्यूटरी आर्बिट्रेशन भी हो सकता है, 2-4 आपने पढ़ा था। साथ ही साथ कौन से वो मैटर हैं जिनको आर्बिट्रेशन में भेजा जाएगा, और कौन से मैटर इज नॉट सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर्बिट्रेशन। जैसे हमने कहा था, जो लोकल लॉ से गवर्न होते हैं, जैसे रेंट कंट्रोल के मैटर, वो आर्बिट्रेशन से नहीं जाएंगे, क्योंकि उनके लिए रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल बना है। तो जो मैटर ट्रिब्यूनल सॉल्व करना, उसको आर्बिट्रेशन को भेजने की जरूरत नहीं है। मैट्रिमोनियल मैटर, इनसॉल्वेंसी मैटर है ना, माइनॉरिटी से रिलेटिंग मैटर, और विल, प्रोहिबिशन, ये सब आपको लिस्ट भेजी गई है, इन मैटर पे आर्बिट्रेशन नहीं। सबसे बड़ी लिस्ट है कि इस मैटर में आर्बिट्रेशन होता और किस में नहीं। लीस्ट जुडिशियल इंटरवेंशन, कोर्ट का कम से कम इंटरवेंशन हो, जिससे कि स्पीडियर आर्बिट्रेशन पॉसिबल है, ठीक। सेक्शन 8 इसी को कहता है कि अगर देयर इज अ वैलिड आर्बिट्रेशन क्लॉज, वैलिड आर्बिट्रेशन क्लॉज होना चाहिए, तो फिर कोर्ट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ आइदर पार्टी, सुओ मोटो नहीं भेजती है, कोर्ट ऑन द अप्लीकेशन ऑफ आइदर पार्टी सेंड सच पर्संस टू आर्बिट्रेटर, और कहा जाएगा जाइए आप खुद आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर लीजिए, नहीं कर पा रहे तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कर देगी, गो एंड सॉल्व योर मैटर थ्रू आर्बिट्रेशन। ये आर्बिट्रेशन क्लॉज का है, यहाँ आप कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। आप कहेंगे सर सेक्शन 89 सीपीसी में तो एडीआर है, वहां पर वो आर्बिट्रेशन क्लॉज का मैटर नहीं होता है, पार्टीज के बीच कोई आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। मगर कोर्ट अपनी ड्यूटी फॉलो करते हुए खुद ही पार्टीज को कहां भेज देती है, आर्बिट्रेशन पे, उसको हम लोग बोलते हैं एडीआर, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम। तो एडीआर के थ्रू वो मैटर जाएंगे जिसमें कोई एसी अवेलेबल नहीं, कोई आर्बिट्रेशन क्लॉज अवेलेबल नहीं है, इसमें कौन से मैटर जाएंगे, है ना, इसमें कौन से मैटर जाएंगे, इसमें वो मैटर जाएंगे जिसमें आर्बिट्रेशन क्लॉज अवेलेबल है। ठीक, अब यहां डिस्कशन का ये उस दिन बड़ा अच्छा मैटर आया था कि क्या वैलिड आर्बिट्रेशन क्लॉज होना चाहिए, अगर मेन कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड डिक्लेयर हुआ तो क्या आर्बिट्रेशन क्लॉज वैलिड रहेगा। तो हमने उनका था डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी एंड सेवराबिलिटी, और गुरमुख दास सलूजा वाला केस था ना, अशोक ट्रेडर्स, अशोक ट्रेडर्स है आपके नोट्स में देखिए, अशोक ट्रेडर्स वर्सेस गुरमुख दास सलूजा का, क्योंकि ये जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट पढ़ाएंगे ना तब भी पढ़ाएंगे वहां कि अगर अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म है तो उसकी कोई स्विंग कैपेसिटी नहीं होती ना। आप लोग जब पार्टनरशिप एक्ट पढ़िएगा तो अगर अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर्स हैव नो स्विंग कैपेसिटी इन अ कोर्ट ना, बट अनरजिस्टर्ड फर्म अगर आर्बिट्रेशन क्लॉज साइन की हुई है तो आर्बिट्रेशन होगा। अशोक ट्रेडर्स वर्सेस गुरमुख दास सलूजा देखिएगा आपके नोट्स में होगा। ठीक है, फिर हम लोगों ने एक पढ़ा, एट में रेफर किया जाता है और आर्बिट्रेशन क्लास की वैलिडिटी को एट में कोर्ट डिसाइड करेगी, और 16 में अगर आर्बिट्रेशन आर्बिट्रेटर के सामने आप पहुंच गए तो आर्बिट्रेशन क्लॉज की वैलिडिटी को सेक्शन 16 में कौन डिसाइड करेगा, आर्बिट्रेटर हिमसेल्फ। सेक्शन 11 में आर्बिट्रेटर का आप लोग ने अपॉइंटमेंट कराया था, अगर वो इनकॉम्पिटेंट नहीं है या कोई पार्टी उसको चैलेंज करना चाहती है तो प्रोसीजर फॉर चैलेंज आप लोगों ने 13 वगैरह पढ़ा है। ठीक है, अगर आर्बिट्रेटर से खुश नहीं है कोई पार्टी और चाहती है आर्बिट्रेटर रिप्लेस करना तो ऑब्जेक्शन तुरंत फाइल करना पड़ता है ना, कितने दिन के भीतर, 15 दिन है ना, देखिएगा सेक्शन 13 या किस में था,
15
आप लोग भूल गए, मोयो मोयो हो गया, मोय मोय अभी हमको बताया गया मोय मोय होता है, तो ये तो एक तो मौसम ने मोय मोय कर दिया है ना, जिसके यहाँ शादी होगी वो यही कह रहा होगा ना, मोय मोय छाता खरीदो लान में डेकोरेशन होगा, लड़की सोच रही कि हम ऐसे ही एंट्री करेंगे, लड़का सोच रहा हम वैसे करेंगे, आज सब कुछ
रेनकोट पहन के सब करेंगे,
मोय मोय हो गया। ठीक है, तो याद रखिए भाई उसमें अगर कोई पार्टी तो तुरंत ऑब्जेक्शन करना पड़ता है ना, और ये ऑब्जेक्शन कौन सॉल्व करेगा, कोर्ट की खुद आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटर हमने क्या कहा था रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस का क्या, सीधा सीधा आर्बिट्रेटर खुद डिसाइड करेगा कि वो कॉम्पिटेंट है कि नहीं। उसके बाद फिर हम लोगों ने सेक्शन 16 को डिस्कशन किया था, सबको याद होगा 8 and 16। फिर हमने कहा था सेक्शन जैसा 9 है वैसे ही सेक्शन 17 इंटरिम ऑर्डर 9 में कोर्ट देती है। अच्छा, कोर्ट जब भी बात करोगे सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 का ई, कोर्ट का मतलब अगर सिविल कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन है तो सिविल कोर्ट, और अगर हाई कोर्ट ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन एक्सरसाइज करती है दिल्ली तो फिर कोर्ट का मतलब हाई कोर्ट, ध्यान रखिएगा। और इंटरनेशनल क्रिमिनल इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन के मामले में हाई कोर्ट। ठीक, तो यहां हम लोगों ने कोर्ट की डिफिनीशन पढ़ी थी। सेक्शन 17 में जो इंटरिम ऑर्डर देने का राइट है वो ट्राइब्यूनल को, आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल। तो आर्बिट्रेटर्स इंटरिम रिलीफ इंटरिम मेजर्स दे सकते हैं, ये किस सेक्शन से देंगे, 17 से बेटा, वहां अपील होगा। 17 में इंटरिम ऑर्डर देंगे और कोर्ट इंटरिम ऑर्डर किस में देगी, 9 में। तो 9 कमा हम लोग पढ़े थे 17, अब इसके बाद देखो आज का स्टार्ट करने चल रहे हैं, आराम से सब कोई घर पे बैठे हैं, आराम से देखिए आज की क्लास थर्ड लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं। जैसा लग रहा है कि ये चार लेक्चर तक जाएगा, है ना। तीसरे लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं। सब बेयरैक निकाल लीजिए, एकदम निकाल लीजिए बेयरैक। अब आ रहे हैं हम लोग, नेक्स्ट आ रहा है आर्बिट्रेटर। आप लोगों देखिए पहले आर्बिट्रेशन क्लॉज हम लोगों ने वैलिडिटी डिसाइड कर लिया, मैटर को कहाँ सेंड कर दिया, आर्बिट्रेटर। फिर आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर लिया, आर्बिट्रेटर भी सेटल्ड हो गया, फिक्स हो गया, अपॉइंट हो गया हमारे पास। अब सब कुछ होने के बाद कुछ एंट्री मार्डर ऑर्डर था तो पास हो गया। अब क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करें, सीपीसी तो लगेगी नहीं ना, सीपीसी लगती है सिविल ट्रायल में। यहाँ पर हमको बहुत जल्दी काम करना है ना, और तेज काम करने के लिए फिर क्या सीपीसी चलाओगे, नहीं। तो यहाँ पर आखिर क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाए, कौन सी लॉ लगाई जाए, कौन सी प्रोसीजर, भाई आर्बिट्रेटर कैसे मैटर को सॉल्व करे। तो इसके लिए भी देखिए फ्रीडम है, सेक्शन देखिए 20 है ना, कौन सा देखिए, प्रोसीजर फॉर आर्बिट्रेशन,
कमेंसमेंट ऑफ आर्बिट्रल प्रोसीडिंग
17 के बाद देखते चलिए, हेडिंग पढ़ते चलिए, हम टिक करा दे बस। हाँ 18 देखिए क्या है, देखो ऑन कर लो। हाँ बेरेक निकाले नहीं, 18 क्या कर रहा है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर किस में,
19 में,
सेक्शन 19 टिक करिए, रूल्स ऑफ प्रोसीजर। आखिर आर्बिट्रेशन में कैसे आर्बिट्रेशन होगा, क्या रूल लगेगा, कौन सा नियम लगेगा, और ये रूल्स कौन बताएगा। तो सेक्शन 19 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि अब अपॉइंटमेंट हो गया, आर्बिट्रेशन के पास मैटर चला गया, आर्बिट्रेटर बैठ गए हैं, पर अभी ये नहीं पक्का है कि कैसे करा जाए, क्योंकि सीपीसी होती तो सीपीसी से हम लोग सिविल मैटर, यहां पर कौन से रूल्स, तो स्टार्ट कर दीजिए।
चैप्टर 5 कंडक्ट ऑफ आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स, सेक्शन 19 डिटरमिनेशन ऑफ रूल्स ऑफ प्रोसीजर, सब सेक्शन 1 द आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल शैल नॉट बी बाउंड बाय द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 और द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872।
दो चीजों से बाउंड नहीं है क्या, किससे किससे बाउंड नहीं है आर्बिट्रल, अंडरलाइन कीजिएगा ना, सीपीसी से ना, क्योंकि इसे जल्दी करना है, और एविडेंस और सीपीसी लगाएंगे तो ये तो कोर्ट हो जाएगी ना, इसीलिए बाउंड नहीं। तो अब बाउंड नहीं है तो आखिर किस चीज से फिर बाउंड होगी, बताइए।
सबसेक्शन 2 सब्जेक्ट टू दिस पार्ट द पार्टीज आर फ्री टू एग्री ऑन द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय द आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल इन कंडक्टिंग इट्स प्रोसीडिंग्स। सबसेक्शन 3 फेलिंग एनी एग्रीमेंट रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 2 द आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल मे सब्जेक्ट टू दिस पार्ट कंडक्ट द प्रोसीडिंग्स इन द मैनर इट कंसीडर्स अप्रोप्रिएट।
देखिए कितना अच्छा लिख रहा है, पहला कह रहा है देखिए पूरा कंसेंसस बेस्ड है ना, ये कंसेंसस बेस्ड आर्बिट्रेशन है। तो सेक्शन 2 में 19 के क्या कह रहा है, पार्टीज खुद डिसाइड करें क्या प्रोसीजर होगा, रिटन आर्गुमेंट होगा कि ओरल होगा, कितने सबमिशंस होंगे, एविडेंस कैसे लिया जाएगा, ये सारा कुछ कौन डिसाइड करे, पार्टीज। और अगर पार्टी फेल हो जाए डिसाइड करने में तो कौन डिसाइड कर देगा, खुद आर्बिट्रेटर डिसाइड करेगा कि हम मैटर को कैसे प्रोसीड करेंगे। तो सेक्शन 19 टिक करिए, प्रोसीजर के मामले में पार्टीज फ्री हैं, पूछा जाए कि कौन बताएगा कि आर्बिट्रेटर कैसे मैटर सॉल्व करेगा, क्योंकि सीपीसी और एविडेंस नहीं लगता, तब ये खुद पार्टीज डिसाइड कर लें, और पार्टी ने डिसाइड करें तो किस पे छोड़ दीजिए आप, आर्बिट्रेटर, क्योंकि एक्सपीरियंस होते हैं, इसीलिए एक्सपीरियंस्ड आर्बिट्रेटर की बात की गई है, एंड दे विल डिसाइड इट। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन,
प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन, सेक्शन 20 है।
अच्छा, प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन किस जगह होगा, खुद आप लोग डिसाइड कर लीजिए, वहीं पे डिसाइड हो जाएगा, तो 20 भी इतना नहीं देखना है। हाँ,
सेक्शन 21 कमेंसमेंट ऑफ आर्बिट्रल प्रोसीडिंग,
ये टिक करिए, कमेंसमेंट किस दिन से। प्री में आता है कि आर्बिट्रेशन, जैसे आप लोग पढ़े होंगे सिविल सूट, जब सीपीसी पढ़ाएंगे सूट किस दिन से कमेंस माना जाए, तो सेक्शन 26 कहता बाय इंस्टीट्यूशन ऑफ प्लेंट, जिस दिन प्लेंट दाखिल हुआ उसी दिन से मानेंगे वाद का, सूट का प्रारंभ हो गया। तो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग किस दिन चालू हुई, तो उसके लिए यहां बताया जा रहा है कि जब रिसीव होगी नोटिस फॉर आर्बिट्रेशन उसी दिन से चालू होगा। बस पढ़ दीजिए इसको,
अनलेस अदरवाइज अग्रीड बाय द पार्टीज द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर डिस्प्यूट कमेंस ऑन द डेट ऑन विच अ रिक्वेस्ट फॉर दैट डिस्प्यूट टू बी रेफर्ड टू आर्बिट्रेशन इन इज रिसीव्ड बाय द रिस्पोंडेंट,
इज रिसीव्ड बाय द, जब आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग की शुरुआत करने की, एक बार फिर पढ़ दीजिए इसको।
अनलेस अदरवाइज एग्रीड बाय द पार्टीज द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर डिस्प्यूट कमेंस ऑन द डेट ऑन विच अ रिक्वेस्ट फॉर दैट डिस्प्यूट टू बी रेफर्ड टू आर्बिट्रेशन इज रिसीव्ड बाय द रिस्पोंडेंट।
आर्बिट्रेशन को कोई डिस्प्यूट भेजा गया है भाई, एक अप्लीकेंट होगा, दूसरा क्या होगा? रिस्पोंडेंट। और जब उसकी नोटिस किसको भेज दी जाए? अपोजिट पार्टी को। अपोजिट पार्टी को आर्बिट्रेशन की नोटिस जिस दिन रिसीव होगी, अंडरलाइन कीजिएगा, उसी दिन से मानेंगे आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई। ऑन द डेट ऑफ रिसीविंग द नोटिस ऑफ आर्बिट्रेशन बाय द रिस्पोंडेंट अपोजिट पार्टी, उसी दिन से मानते हैं कि हम लोग स्टार्ट कर लेते। क्यों ऐसा मान रहे? क्योंकि अभी आगे चल के 29 पढ़ाएंगे, 23, तो उसमें लिखा हुआ है कि कितने दिन में आर्बिट्रेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। कह रहा 1 ईयर, इस दिन से 12 मंथ के बीच होता है। तो हाँ, और चलिए
हाँ,
पूछो बेटा।
15 इसमें इंक्लूडेड होगा?
हाँ,
मतलब अगर 15 वाले क्लॉज में कोई प्रोसीड कर रहा है सो बेसिकली वो इसके अंदर ही आ जाएगा।
वो तो उसी में इंक्लूडिंग होगा ना, क्योंकि नोटिस गई हुई, तभी तो ऑब्जेक्शन डालेंगे।
फर्स्ट अटेम्प्ट जो नोटिस वाला है वही,
हाँ, वो आ जाएगा, उसी में आ जाएगा। वेलकम बेटा। हाँ,
22 लैंग्वेज
छोड़ दीजिए, लैंग्वेज भी 21 टिक करिएगा, लैंग्वेज नहीं करना। 23 अब देखना।
सेक्शन 23 स्टेटमेंट ऑफ क्लेम एंड डिफेंस। सब सेक्शन 1, विद इन द पीरियड ऑफ टाइम अग्रीड अपॉन बाय द पार्टीज और डिटरमाइंड बाय द आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल द क्लेमेंट शैल स्टेट द फैक्ट्स सपोर्टिंग हिज क्लेम द पॉइंट्स एट इश्यू एंड द रिलीफ और रेमेडी सॉट एंड द रेस्पोंडेंट शैल स्टेट हिज डिफेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज पर्टिकुलर्स unless the parties have otherwise agreed as to the required elements of those statements।
अब देखिए, जैसे प्लेंटिफ और डिफेंडेंट होता है ना, हम लोगों ने सिविल मैटर में क्या मान, दो पार्टी होती है ना, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। प्लेंटिफ अपना क्या प्रस्तुत करता है? प्लेंट। और डिफेंडेंट क्या जवाब देता है? रिटन स्टेटमेंट। तो प्लेंटिफ का प्लेंट आता है और डिफेंडेंट की ओर से जो आता है वो रिप्लाई होता है, उसको बोलते हैं रिटन स्टेटमेंट। आर्बिट्रेशन में क्या होगा? स्टेटमेंट ऑफ क्लेम और स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस। ध्यान रखिएगा, आर्बिट्रेशन में दो पार्टी है, एक पार्टी स्टेटमेंट ऑफ क्लेम देगी और अपोजिट पार्टी क्या उसके जवाब में देगी रिप्लाई? स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस। तो स्टेटमेंट ऑफ क्लेम एंड स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस, और स्टेटमेंट ऑफ क्लेम के बाद विद इन अ पर्टिकुलर टाइम, समय दिया है, उतने में आपको स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस अपोजिट पार्टी को दाखिल कर देना है। नहीं दाखिल करेंगे तो एक्स पार्टी मूव होगा। देखिए पढ़िए इसमें।
सब सेक्शन 2, द पार्टीज में सबमिट विद देयर स्टेटमेंट ऑल डॉक्यूमेंट दे कंसीडर टू बी रेलेवेंट और मे ऐड अ रेफरेंस टू द डॉक्यूमेंट और अदर एविडेंस दे विल सबमिट।
यानी अपने स्टेटमेंट ऑफ क्लेम और स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस के साथ सारे डॉक्यूमेंट जिसको सपोर्ट कर रहे हैं सारे डॉक्यूमेंट लगा दीजिए। डॉक्यूमेंट नहीं लगा रहे तो उसका रेफरेंस नहीं, ऑनलाइन होता है तो उसको रेफरेंस दे दिया था। और चलिए
2, कैपिटल ए, द रिस्पोंडेंट इन सपोर्ट ऑफ हिज केस मे आल्सो सबमिट काउंटर क्लेम और प्ली अ सेट ऑफ which shall be adjudicated upon by the arbitral tribunal. If such counterclaim or set off falls within a scope of arbitration agreement.
Yani opposite party kya prastut kar sakta hai? Jab hum padhenge CPC to wo counterclaim ya set off bhi de sakta, wo bhi adjudicate karega arbitrator, theek hai.
Subsection 3, unless otherwise agreed by the parties, either party may amend or supplement his claim or defense during the course of the arbitral proceedings, unless the arbitral tribunal considers it inappropriate to allow the amendment or supplement having regard to the delay in making it.
अच्छा, amendment भी हो सकता है, जैसे हम लोग CPC में पढ़ते हैं ना, 617 है ना, order 6 rule 17, amendment है plain और रिटन स्टेटमेंट का, वहां पर अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग होता है, उसी तरह अमेंडमेंट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ क्लेम अपना कहीं ना कहीं नोट करते रहेगा। अमेंडमेंट स्टेटमेंट ऑफ क्लेम एक पार्टी प्रस्तुत करेगी तो अपोजिट पार्टी क्या लाएगी, स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस। साथ ही साथ आपको सारे इसके साथ डॉक्यूमेंट्स लगा देने होंगे, डॉक्यूमेंट के साथ उसका रेफरेंस दीजिए, और अगर बाद में आप चेंज करना चाहते हैं, अमेंड करना चाहते हैं, तो यू हैव अ राइट टू अमेंड। जब तक अवार्ड ना आ जाए तब तक आप अमेंड कर सकते हैं विद द लीव ऑफ आर्बिट्रेटर्स, आर्बिट्रेटर से पूछ के आप कर सकते हैं। और चलिए
सबसेक्शन 4, द स्टेटमेंट ऑफ क्लेम एंड डिफेंस अंडर दिस सेक्शन शैल बी कंप्लीटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट द आर्बिट्रेटर और ऑल द आर्बिट्रेटर्स एज द केस मे बी रिसीव्ड नोटिस इन राइटिंग ऑफ देयर अपॉइंटमेंट।
ये अंडरलाइन कर लीजिए, ये जो क्लेम एंड डिफेंस है ना, यानी कागजी कार्रवाई जो है, प्लेन क्लेम एंड डिफेंस, क्लेम एंड डिफेंस, ये दोनों कितने दिन में हो जाना चाहिए? 6 months। किस डेट से? जिस दिन आर्बिट्रेटर के अपॉइंटमेंट की आर्बिट्रेटर्स को नोटिस हुई है, यानी आर्बिट्रेटर के अपॉइंटमेंट से 6 महीने के भीतर स्टेटमेंट ऑफ क्लेम एंड स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस पार्टीज को कर देना होगा। मानी स्टेटमेंट ऑफ क्लेम तो आया पर स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस नहीं आ रहा, 6 महीना बीत गया, तब फिर क्या करे आर्बिट्रेटर? एक्स पार्टी, देखिए आगे आएगा। हाँ, नेक्स्ट सेक्शन,
सेक्शन 24, हियरिंग्स एंड रिटन प्रोसीडिंग्स है।
हाँ, 24 में देखिए हियरिंग एंड रिटन प्रोसीडिंग है, इसको पढ़ दीजिए थोड़ा सा।
सेक्शन 24, हियरिंग्स एंड रिटन प्रोसीडिंग्स, सब सेक्शन 1, अनलेस अदरवाइज अग्रीड बाय द पार्टीज द आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल शैल डिसाइड वेदर टू होल्ड ओरल हियरिंग फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ एविडेंस और फॉर ओरल आर्ग्यूमेंट और वेदर द प्रोसीडिंग शैल बी कंडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड अदर मटीरियल्स।
अब देखिए, ये आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल जो बना है ना, सेक्शन 24 कहता है, अब देखिए आप सब एकदम वही चीज सोचिए, सीपीसी में क्या होता था, पहले प्लेंट आता था, फिर रिटर्न स्टेटमेंट, फिर एडमिशंस वगैरह होते थे, सारे डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किए जाते थे, फिर इश्यूज फ्रेम होता था, फिर विटनेसेस को बुलाया जाता था ना, फिर ओरल आर्ग्यूमेंट होता था। ठीक, यहाँ पे भी क्या कह रहा है, बीच की चीजों को शॉर्टकट किया और कहा कि स्टेटमेंट ऑफ क्लेम आया और फिर स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस, उसके साथ सारे जितने डॉक्यूमेंट हैं वो प्रोड्यूस कर दीजिए, ये सब 6 महीने के भीतर हो जाएगा। अब उसके बाद प्रोसीजर स्टार्ट हो रही, प्रोसीजर में क्या ओरल हियरिंग होगी ये ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगा। ओरल हियरिंग हो सकता है, कई जगहों पे ओरल हियरिंग नहीं करते हैं, वो कहते हैं सीधे जो हमारे पास रिटन सबमिशंस हैं, जो रिटन हम लोग लिख के दिए हैं, उसी के आधार पर आप क्या डिसाइड कर दो, सॉल्व कर दो। तो अब देखिए यहाँ पर, इसलिए थोड़ा सा इसको आपको 24 पढ़ा रहे हैं क्योंकि इसका जस्ट अपोजिट हम आपको जब पढ़ाएंगे अभी 29B, ठीक है, वहां पर आपको बताएंगे। एक होता फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेशन, एक ये आर्बिट्रेशन है, ये ऑर्डिनरी है, और एक होगा फास्ट ट्रैक। फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेशन में कोई भी ओरल हियरिंग नहीं, ऑर्डिनरी फिर से देखिएगा, ऑर्डिनरी आर्बिट्रेशन में ओरल हियरिंग हो रही है, हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, मगर फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेशन, अभी देखिए कौन सा 29B है ना, देखिए फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेशन कौन सा, देखो थोड़ा थोड़ा कनेक्ट करते चलिए, बी है ना, 29B, हाँ सुबह तो यही था, अभी बारिश में फिसक गया हूँ, हम नहीं जानते हैं।
पार्टीज टू एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट मे एट एनी स्टेज आइदर बिफोर और एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल एग्री इन राइटिंग टू हैव देयर डिस्प्यूट रिजॉल्व बाय फास्ट ट्रैक प्रोसीजर स्पेसिफाइड इन सब सेक्शन 3।
अब देखिए ये अभी आपको पढ़ाएंगे इसमें, तो ये फास्ट ट्रैक है, अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं कैसा है, ऑर्डिनरी मतलब एक सिंपल जो आर्बिट्रेशन हो रहा है, और फिर भी पार्टी चाहती नहीं बहुत तेज तेज मैटर हमारा सॉल्व हो, तो गो फॉर फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेशन। तो 24 पे हम लोग थे, मैं क्या बोल रहा था अभी इसी को हम क्लियर करेंगे, 24 में एकदम जब स्टेटमेंट ऑफ क्लेम एंड स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस आने के बाद ओरल आर्ग्यूमेंट होगा, या पार्टी कहें तो सीधे कौन सा आर्ग्यूमेंट हो जाए, रिटर्न आर्ग्यूमेंट, मगर अगर यही आर्बिट्रेशन कौन सा होगा, फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेशन, तो वहां ओरल ओरल बहस उसकी जरूरत नहीं है, सीधे रिटर्न जो उनका स्टेटमेंट ऑफ क्लेम एंड डिफेंस है ना, उसी के आधार पर मैटर सॉल्व हो जाएगा। अब थोड़ा सा और चलिए, ये सबको देखो क्लियर हो रहा है ना कंसेप्ट। आपने पहले आर्बिट्रेशन क्लॉज चेक किया, उसकी वैलिडिटी को चेक किया, आर्बिट्रेशन क्लॉज चेक करने के बाद उसके बाद आपने आर्बिट्रेटर अपॉइंट किए, आर्बिट्रेटर अपॉइंट होने के बाद प्रोसीजर आप लोगों ने तय किया 19 में, प्रोसीजर तय होने के बाद स्टेटमेंट ऑफ क्लेम एंड डिफेंस डाला 21 में, कब स्टार्ट होता 23 में स्टेटमेंट ऑफ क्लेम एंड डिफेंस आ गया, कितने दिन में, 6 महीने के भीतर। स्टेटमेंट ऑफ क्लेम एंड डिफेंस आने के बाद प्रोसीजर स्टार्ट हो गया, उसमें यह तय हुआ कि ओरल आर्ग्यूमेंट होगा, करना चाहिए करिए, ना करना हो तो सीधे रिटर्न आर्ग्यूमेंट्स दीजिए। उसके बाद मानिए एक पार्टी तो आई है, दूसरी पार्टी 6 महीने के भीतर नहीं, तो आपके पास फिर क्या मजबूरी है, आर्बिट्रेटर क्या करे, एक्स पार्टी 25 देखिए,
सेक्शन 25 डिफॉल्ट ऑफ अ पार्टी, अनलेस अदरवाइज एग्रीड बाय द पार्टीज वेयर विदाउट शोइंग सफिशिएंट कॉज ए द क्लेमेंट फेल्स टू कम्युनिकेट हिज स्टेटमेंट ऑफ क्लेम इन अकॉर्डेंस विद सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 23 द आर्बिट्रल टर्मिनल शैल टर्मिनेट द प्रोसीडिंग, बी द रिस्पोंडेंट फेल्स टू कम्युनिकेट हिज स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस इन अकॉर्डेंस विद सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 23 द आर्बिट्रल टर्मिनल शैल कंटिन्यू द प्रोसीडिंग्स विदाउट treating that failure in itself as an admission of the allegations by the claimant and shall have the discretion to treat the right of the respondent to file such a statement of defense as having been forfeited. C. A party fails to appear at an oral hearing or to produce documentary evidence. The arbitral tribunal may continue the proceedings and make the arbitral award on the evidence before it.
कितना बढ़िया देखिए लिखा है, एकदम इसको बड़े आराम समझा सकता है। कह रहा है 25 में कि आर्बिट्रेटर अपॉइंट हो गया, प्लेंटिफ यानी स्टेटमेंट ऑफ क्लेम जिसने देना था वही नहीं अपीयर हुआ, तो क्या कर दो, डिसमिस कर दो, प्रोसीडिंग को पूरी क्या कर दीजिए, डिसमिस करिए। प्लेंटिफ तो आ गया, स्टेटमेंट ऑफ क्लेम जो प्लेंटिफ है क्लेमेंट तो आया, मगर अपोजिट पार्टी नहीं अपीयर हुआ 6 महीने में, तब कैसा मूवमेंट हो जाएगा। फिर कह रहा तब एक्स पार्टी मूव करिए और मानिए कि अपोजिट पार्टी ने सब कुछ एडमिट कर लिया, अगर वो नहीं आया तो यहाँ क्या मानेंगे हम लोग, अपोजिट पार्टी ने क्लेम को एडमिट कर लिया है। और फिर कह रहा अगर ओरल आर्ग्यूमेंट के समय नहीं आए तो कोई बात नहीं, माना जाएगा उन्हें कुछ नहीं कहना था, और फाइनली को आर्बिट्रेटर जो है वो अवार्ड दे देगा। प्लेंटिफ नहीं आता तो सूट क्या होता है, डिसमिस हो जाता है, और डिफेंडेंट नहीं आता तो एक्स पार्टी, वही ऑर्डर 9 वाला ही तो इसमें लिखा, और कोई अलग से चीज नहीं लिखा। प्लेंटिफ नहीं आता तो आप डिसमिस करते हो, डिफेंडेंट नहीं आता तो एक्स पार्टी ऑर्डर करते हो, यहाँ पे भी वही कह रहा हो, अगर प्लेंटिफ नहीं अपील हुआ तो डिसमिस कर देंगे, और अगर प्लेंटिफ आ रहा है और डिफेंडेंट नहीं आ रहा है तो हम लोग एक्स पार्टी मूव करके और फिर फाइनल जो भी है आर्बिट्रेशन अवार्ड इशू हो जाएगा। तो 25 को हम लोग वही ऑर्डर 9 से तुलना कर सकते हैं, 25 को किस ऑर्डर से डील कर सकते हैं, ऑर्डर 9 ऑफ द सीपीसी, वो इफेक्ट ऑफ अपीयरेंस ऑफ पार्टीज है उसमें ऑर्डर 9 में, ठीक है। और चलिए
ये हो गया, अब उसके बाद 26 है एक्सपर्ट अपॉइंटमेंट बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल।
अच्छा आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल चाहे ना, तो जैसे हम लोग नहीं ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट लिए थे एविडेंस एक्ट में पढ़े थे ना 45 पे, उसी तरह यहाँ पर भी अगर इफ आर्बिट्रेटर थिंग्स फिट, इसको टिक नहीं करना है, अगर वो चाहे तो एक्सपर्ट की ओपिनियन ले सकते हैं, एक्सपर्ट की पैनल बैठा सकते हैं। 26 नहीं टिक करना, आपने टिक किया 23 और उसके बाद 25, इम्पॉर्टेंट में मैंने दो ही टिक कराए हैं, 23 उसके बाद कौन सा किया है 25, ये इम्पॉर्टेंट है। 27
कोर्ट सेक्शन 27 कोर्ट असिस्टेंस इन टेकिंग एविडेंस।
अच्छा आर्बिट्रेटर चाहे तो कोर्ट से असिस्टेंस ले सकता है, भाई एविडेंस को एक्सेप्ट करने चीफ क्रॉस कराने का आर्बिट्रेटर के पास नहीं पावर है ना भाई, आर्बिट्रेटर थोड़ी ना ओथ करा देगा, चीफ क्रॉस कराएगा, तो किसकी असिस्टेंस लेगा। अगर कोई एविडेंस एडमिट करना तो कोर्ट से रिक्वेस्ट किया जाएगा कि आप एविडेंस एडमिट करके हमको दे दीजिए, तो ये असिस्टेंस ली जा सकती है, 27 में टिक करने की जरूरत नहीं है, इससे नहीं आया क्वेश्चन। हाँ,
फिर उसके बाद है चैप्टर 6 मेकिंग ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड एंड टर्मिनेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स।
28 याद है, हम लोगों ने सेक्शन 19 डिस्कस किया कि क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा, वो किस सेक्शन में था, 19 में। 28 याद है मैंने बोला था कि कौन सी लॉ लगाएंगे, व्हाट लॉ विल बी अप्लीकेबल। तो अगर डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन है तो इंडिया की लॉ, इफ देयर इज अ डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन द आर्बिट्रेटर विल अप्लाई द इंडियन लॉ, और अगर इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन है तो पार्टीज डिसाइड करें कि कौन सी लॉ चाहिए, अगर वो नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं तो फिर आर्बिट्रेटर खुद डिसाइड करेगा। ये किस सेक्शन में मिला था हम लोग को, 28 में मैंने कहा था आर्बिट्रेटर्स या आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल डील विद द फॉर्म एंड नॉट विद द सब्सटेंस, लॉ ऑफ उसका लेक्स लोकी, इसीलिए हमने बोला था, इस पे लिखा था। यानी आप इंडिया में आर्बिट्रेशन करा रहे हो अमेरिका का, तो आप चाहे तो कहां की लॉ लगवा लीजिए, अमेरिका की लॉ लगवाइए, वी विल एडमिनिस्टर। क्यों, क्योंकि हमने कहा था इंडियन लीगल सिस्टम इज फॉर सर्विसेज, हम लोग क्या देने के लिए अब तैयार हैं, हम लोग सेवा देने को तैयार हैं, कोई भी सेवा लेना चाहे ले, लीगल सर्विसेज रेडी है पूरे वर्ल्ड में अपनी सर्विसेज देने को थ्रू आर्बिट्रेशन। ठीक,
28 पढ़ना
नहीं, ये तो पढ़ दिए थे ना 28 में, तो याद है ना सबको, ऑनलाइन बेटा 28 याद है सबको,
Yes, sir.
कोई ये तो नहीं कहेगा कि पढ़े कब थे, नहीं याद होगा। ठीक है, दोनों आवाज आ रही ना,
ठीक
सब सेक्शन,
yes, sir.
ठीक ठीक, इसका सब सेक्शन 228 का ना, ठीक। हाँ,
सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 28, द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल शैल डिसाइड एक्वा एट बोनो और एज एमिएबल कंपोसिटियर ओनली इफ द पार्टीज हैव एक्सप्रेसली ऑथराइज्ड इट टू डू सो।
अच्छा, देखिए क्या कह रहा है, पहले तो देखिए तीन कॉम्बिनेशन बताए, कौन सी लॉ लगाएंगे, कौन से कानून के हिसाब से, विधि के हिसाब से हम लोग मैटर को सॉल्व करें। तो 28 कहता है कि अगर डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन है तो इंडियन लॉ, और अगर इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन है तो अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ द पार्टीज। अब सब सेक्शन 2 कह रहा है 28 का कि अगर पार्टी दोनों कंसेंट दे दें आर्बिट्रेटर्स को और कह दें कि छोड़िए लॉ की बातें, कोई लॉ मत लगाइए, आप ये लिखित लॉ को छोड़ दीजिए जो लिखी हुई है, आप इक्विटी के हिसाब से सॉल्व करिए अनरिटन लॉ। इक्विटी का मतलब क्या होता है, अनरिटन लॉ, अपने डिस्क्रिशन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू इक्वलिटी एंड पैरिटी यू डिसाइड द मैटर। यानी लॉ मत देखिए, लॉ छोड़ दीजिए, आप इक्विटी के हिसाब से डिसाइड कीजिए। तो जब इक्विटी के हिसाब से डिसाइड करना होता है तो सेक्शन 28 सब सेक्शन 2। तो अब देखिए इक्विटी के हिसाब से कब कोर्ट आर्बिट्रेटर डिसाइड करेगा, जब दोनों पार्टी क्या कर दें, एक्सप्रेसली वर्ड है देखो, When both party expressly authorized, तो ये किसके हिसाब से सॉल्व करेगी कोर्ट, इक्विटी, तब लॉ नहीं लगेगा। देखिए लॉ और इक्विटी दो चीज है, लॉ का मतलब रिटेन लॉ ना, जो किताबों में लिखी है वो क्या है, रिटेन लॉ, और जो किताबों के बाहर जाके जब आप किसी मैटर को नेचुरल जस्टिस के हिसाब से सॉल्व करते हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसीजन अकॉर्डिंग टू इक्विटी। तो सब सेक्शन 2 में कह रहा है इक्विटी के हिसाब से मैटर को सॉल्व किया जाना चाहिए। 29
सेक्शन 29 डिसीजन मेकिंग बाय पैनल ऑफ आर्बिट्रेशन। सब सेक्शन 1 अनलेस अदरवाइज अग्रीड बाय द पार्टीज इन आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स विद मोर देन वन आर्बिट्रेटर एनी डिसीजन ऑफ द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल शैल बी मेड बाय द मेजॉरिटी ऑफ ऑल इट्स मेंबर्स।
अच्छा, जब एक से ज्यादा आर्बिट्रेटर हो तो फिर जो डिसीजन होगा वो किससे होगा, इसीलिए तो हम लोग ऑड नंबर पे आर्बिट्रेटर रख रहे थे। सेक्शन 10 क्यों ऑड में रख रहा था, कि अगर कुछ आपस में कॉन्फ्लिक्ट भी है तो जो डिसीजन हो किस पे हो, मेजॉरिटी। तो 29 कहता है कि मेजॉरिटी पे डिसाइड होगा। और चलिए
इसका सब सेक्शन टू कहता है नॉट विद स्टैंडिंग सब सेक्शन वन इफ ऑथराइज बाय द पार्टीज और ऑल द मेंबर्स ऑफ द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल क्वेश्चंस ऑफ प्रोसीजर मे बी डिसाइडेड बाय द प्रिजाइडिंग आर्बिट्रेटर।
ठीक है छोड़ दीजिए इसको।
सेक्शन 29 कैपिटल ए टाइम लिमिट फॉर आर्बिट्रल अवार्ड,
ये इम्पोर्टेंट है कितने दिन में आर्बिट्रेशन को आपको एंड कर लेना है। 12 मंथ है ना, ये पूछा जाता है 29A। हाँ
29A टाइम लिमिट फॉर आर्बिट्रल अवार्ड सबसेक्शन 1 द अवार्ड इन मैटर्स अदर देन इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन शैल बी मेड बाय द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्लीडिंग्स अंडर सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 23।
क्लियर हो रहा है सबको? कह रहा है कि आर्बिट्रेशन का काम कितने दिन में अवार्ड आ जाएगा, तो 12 मंथ किस दिन से, जब उन लोगों की प्लीडिंग आ गई स्टेटमेंट ऑफ क्लेम और स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस। 23 में था ना स्टेटमेंट ऑफ क्लेम और स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस कितने दिन में आना चाहिए, 6 महीना 6 मंथ। और जब स्टेटमेंट ऑफ क्लेम एंड डिफेंस आ गया उससे 12 मंथ के भीतर अवार्ड आ जाना चाहिए टाइम बाउंड मैनर में। इन टोटल अगर देखा जाए तो मैक्सिमम कितना लगा, 18 मंथ ना, 12 and 6। तो 6 महीने में स्टेटमेंट ऑफ क्लेम एंड डिफेंस यानी प्लीडिंग आ गई, प्लीडिंग कितने दिन में आई, 6 मंथ में। और जब प्लीडिंग आ गई, प्लीडिंग आने के बाद 12 मंथ के भीतर अवार्ड आ जाएगा। इंटरनेशनल अवार्ड के मामले में भी 12 मंथ है, या अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो टाइम एक्सटेंड हो जाएगा। देखिए
provided that the award in the matter of international commercial arbitration may be made as expeditiously as possible and endeavor may be made to dispose of the matter within a period of 12 months from the date of completion of pleading under subsection 4 of section 23।
acha pleading samajh gaye na, pleading वैसे तो cpc में pleading का मतलब plaint and ws, और यहां pleading का क्या मतलब होगा, स्टेटमेंट ऑफ क्लेम एंड स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस, दैट इज कॉल्ड द प्लीडिंग। बहुत ईजी है, नाम बस चेंज हुआ है। तो 29 में कह रहा विद इन 1 ईयर, और इसी के आगे चल के जब सॉरी 12 मंथ, 1 ईयर नहीं, कितना महीना, 12 मंथ। फिर इसके बाद हमने बताया कि फिर देखा जाने लगा कि यार आर्बिट्रेशन में भी बड़ा डिले होता है, तो अब डिले को कम करने के लिए सिर्फ फास्ट ट्रैक कोर्ट बनी है ना, एफटीसी बनी है, उसी तरह एफटीए बना दिया का फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेशन। पर फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेशन में केवल आर्बिट्रेटर एक होना चाहिए, जल्दी काम करना है तो कितना रखना पड़ेगा, आप लोग पढ़े हो ना मेनी कुक स्पॉइल द ब्रोथ, यही तो पढ़े होगे ना, कई कुक होंगे तो खाना क्या कर देंगे, एक ने मिर्चा डाला उसने कहा नहीं थोड़ा और मिर्चा डालना, दूसरा नमक डाला, दूसरे का पता नहीं नमक डाला है कि नहीं और डाल दो। तो कई कुक होते हैं तो खाना, इसीलिए जब 3 आर्बिट्रेटर है तो समय बहुत लगेगा ना, और अगर 1 आर्बिट्रेटर हो तो बस। देखिए एफटीपी, हाँ एफटीए
फास्ट ट्रैक प्रोसीजर एफटीपी सेक्शन 29 कैपिटल बी सबसेक्शन 1 नॉट विदस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट द पार्टीज टू एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट मे एट एनी स्टेज either before or at the time of appointment of the arbitral tribunal agree in writing to have their dispute resolved by fast track procedure specified in subsection 3।
fast track procedure, क्योंकि इतना जल्दी है ना हम लोग को हर चीज की क्या चल रही है समय बहुत ही जल्दी, अच्छा समय भी उसी हिसाब से जल्दी बीत रहा है। देखो आज दिसंबर कितनी हो गई, 4, और अभी देखना किसी दिन हम कहेंगे हैप्पी न्यू ईयर है ना, वो हो जाएगा सब, बहुत तेज बीत रहा है ना। दीपावली से होली एक्सप्रेस तो बहुत तेज भागती है, हम देखे हैं डिले केवल किसमें होता है, होली टू दीपावली एक्सप्रेस में थोड़ा डिले चलता है, लंबा चलता है, बड़ा दिन होता है गर्मी का। ये जो दीपावली से होली का एक्सप्रेस है ना ये थोड़ा तेज चलता है, ठीक है। तो अब देखिए इस तेज के जमाने में हाउ वी कैन स्लो, हम लोग कैसे स्लो हो सकते हैं, इसीलिए कहा फास्ट ट्रैक प्रोसीजर लाओ आर्बिट्रेशन में। और फास्ट ट्रैक प्रोसीजर अडॉप्ट करना है तो फिर आर्बिट्रेटर कितने होंगे, 1। अब देखिए आगे आ रहा है
Subsection 2, the parties to the arbitration agreement while agreeing for resolution of dispute by fast-track procedure may agree that the arbitral tribunal shall consist of sole arbitrator who shall be chosen by the parties.
Sole arbitrator. Section 10 का opposite आ गया ना? Section 10 में कहा था कि आप चाहे जितने arbitrator कर लो, बस number कैसे होना चाहिए? Odd. यहाँ पर क्या आ गया सेक्शन 10 के, इसने कहा सोल आर्बिट्रेटर, क्योंकि ये भाई अकेला आदमी को मौका दीजिए जल्दी से सॉल्व कर देगा। और चलिए टिक करते रहिएगा, इसको सिनॉप्सिस घर पे बना लीजिएगा,
इजी है। थ्री, द आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल शैल फॉलो द फॉलोइंग प्रोसीजर व्हाइल कंडक्टिंग आर्बिट्रेशन प्रोसीजर अंडर सब सेक्शन 1A। द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल शैल डिसाइड द डिस्प्यूट ऑन द बेसिस ऑफ रिटन प्रोसीडिंग डॉक्यूमेंट्स एंड सबमिशंस फाइल्ड बाय द पार्टीज विदाउट एनी ओरल हियरिंग।
बी, विदाउट एनी ओरल, अंडरलाइन कीजिए, मैंने क्या कहा था, जब आप फास्ट ट्रैक प्रोसीजर पे आते हो तो फिर ओरल हियरिंग का जगह नहीं होता है। और आपने अभी 24 पढ़े थे, तो जो ऑर्डिनरी जो आर्बिट्रेशन है, जो नॉर्मल आर्बिट्रेशन है, हम लोग नॉर्मल कह सकते हैं ना उसको, नॉर्मल आर्बिट्रेशन में देखिए ओरल आर्गुमेंट की जगह थी, पर फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेशन में ओरल आर्गुमेंट की कोई जगह नहीं है। और चलिए
बी, द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल शैल हैव पावर टू कॉल फॉर एनी फर्दर इंफॉर्मेशन और क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द पार्टीज इन एडिशन टू द प्लीडिंग्स एंड डॉक्यूमेंट्स फाइल्ड बाय देम।
ठीक।
See, an oral hearing may be held only if all the parties make a request or if the arbitral tribunal considers it necessary to have oral hearing for clarifying certain issues. D, the arbitral tribunal may dispense with any technical formalities if an oral hearing is held and adopt such procedure as deemed appropriate for expeditious disposal of the case. Subsection 4, the award under this section shall be made within a period of 6 months from the date of the arbitral tribunal enters upon the reference.
6 महीने में, कितने दिन में? और ये 6 month कब से? When arbitral tribunal enter into a reference, जब उसको reference मिला उस दिन से 6 महीने के भीतर इसको solve करना है। इसको बोलते हैं fast track arbitration, 2015 amendment से जोड़ा गया होगा। ये 2015 से आया है FTP, यानी फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेशन, पहले आर्बिट्रेशन था उसको और फास्ट ट्रैक कर दिया है ना। तो ये देखिए फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेशन है, फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेशन में जनरली ओरल आर्ग्यूमेंट नहीं होते, ये 6 महीने में हो जाएगा रेफरेंस की डेट से। जबकि जो सामान्य आर्बिट्रेशन था, जो ऑर्डिनरी आर्बिट्रेशन था, क्योंकि भाई अगर कोई फास्ट है तो उसके रेफरेंस में उल्टा हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी में 1 ईयर लग रहा था ना, आफ्टर सबमिशन ऑफ प्लीडिंग्स 1 साल लग रहा था। इस तरह से हम लोगों ने देखा, जनरली देखा जाए तो 2 तरह से आर्बिट्रेशन हो गया, एक ऑर्डिनरी आर्बिट्रेशन और दूसरा फास्ट ट्रैक प्रोसीजर वाला आर्बिट्रेशन। फास्ट ट्रैक प्रोसीजर में आर्बिट्रेटर हमेशा एक रहेगा, कितना रहेगा, एक। जनरली नो आर ओरल आर्ग्यूमेंटिंग, समय बचाना है, रिटर्न आर्ग्यूमेंट के हिसाब से ही, रिटर्न आपकी प्लीडिंग के हिसाब से मैटर सॉल्व हो जाएगा। और ये 6 महीने में, जिस दिन आर्बिट्रेशन को रेफर किया गया उस दिन से 6 महीना। फास्ट ट्रैक प्रोसीजर के लिए किस समय पार्टी एग्री करें, तो कहा नॉट लेटर देन अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर। देखिए पहली लाइन लिखा था ना, लिखा था एट एनी स्टेज बिफोर अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर, पहली लाइन ही ये लिखा था, बिफोर अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर और एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर एंड नॉट लेटर ऑन। इसको टिक करिएगा, टिक नहीं किए थे ना, था ना कि कब फास्ट ट्रैक प्रोसीजर के लिए कब एग्रीमेंट देना पड़ेगा पार्टीज को, तो कह रहा है बिफोर द अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर, सेक्शन 10 में था ना अपॉइंटमेंट, या आर्बिट्रेटर जिस समय अपॉइंट हो रहा उसी समय आप लोग लिख के दे दो कि हमारा मैटर फास्ट ट्रैक प्रोसीजर के थ्रू आप सॉल्व कराओ।
सेक्शन 30, सेटलमेंट, सब सेक्शन 1, इट इज नॉट इन incompatible with an arbitration agreement for an arbitral tribunal to encourage settlement of the dispute, and with the agreement of the parties, the arbitral tribunal may use mediation, conciliation or other procedure at any time during the arbitral proceedings to encourage settlement.
देखिए सेक्शन 30 कह रहा है कि आर्बिट्रेशन में तो मैटर गया, पर आर्बिट्रेटर भी चाहे और पार्टी चाहे तो मैटर को फर्दर किसके थ्रू सॉल्व करा दे, कंसीलिएशन. डिफरेंस आपको भेजे थे ना. देखिए आर्बिट्रेशन में प्राइवेट पार्टी ही सही एडजुडिकेट करती है. क्या करती है? वो डिसीजन देती है, एडजुडिकेट करती है, निर्णय करती है. इसको बोलते हैं न्याय निर्णयन, एडजुडिकेशन. मगर कंसीलिएशन में पार्टी सुलह करती है. कंसीलिएशन में पार्टी क्या करती है? एग्रीमेंट करती है. तो यहां कह रहा है आर्बिट्रेशन में भी मैटर को क्या किया जा सकता है? थ्रू कंसीलिएशन, थ्रू निगोशिएशन, थ्रू मीडिएशन, यानी सारे एडीआर के प्रोसेस हैं, इन सारे सुलह सपाटों के माध्यम से भी आर्बिट्रेशन भी चल रहा है तो भी इसमें आर्बिट्रेटर सॉल्व करवा सकता है. क्योंकि एम इज टू एंड द डिस्प्यूट. डिस्प्यूट को समाप्त करना ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है. तो सेक्शन 30 कह रहा है नॉट विद स्टैंडिंग दैट आर्बिट्रेशन इज गोइंग ऑन, आर्बिट्रेटर चाहे तो मैटर को किसके थ्रू सॉल्व करा सकता है? कंसीलिएशन, मीडिएशन या निगोशिएशन. ठीक. और चलिए नेक्स्ट सेक्शन.
इसका सब सेक्शन 2, 3
कोई टिक है? टिक तो नहीं है ना?
नहीं, वहीं पे है.
31.
सेक्शन 31, फॉर्म एंड कंटेंट्स ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड.
फॉर्म्स एंड कंटेंट ऑफ. अब देखिए अवार्ड आने जा रहा है. प्रोसीजर हो गया ना, हियरिंग हो गई, प्लीडिंग सबमिट हो गया, फास्ट ट्रैक करना था तो फास्ट ट्रैक हो गया. अब सब कुछ होने के बाद अब क्या आने जा रहा है? अब अवार्ड आने जा रहा है. तो अवार्ड का फॉर्म क्या होगा, कंटेंट क्या, उसमें लिखा कैसे जाए? अवार्ड माने डिसीजन ऑफ द आर्बिट्रेटर ना. अवार्ड का मतलब डिसीजन ऑफ द आर्बिट्रेटर. तो अब आने जा रहा है एक 31 में अवार्ड. अवार्ड के पहले बहुत अच्छी लाइन मुझे मिली. एक दिन सुन रहे थे महापुरुष को कौन बनेगा करोड़पति में, अभी शायद किसी दिन सुन रहे थे, तो बस एक बड़ी प्यारी सी लाइन लिखी. अमिताभ बच्चन जी बोल रहे थे इस जीवन के पथ को, जीवन के पथ को अगर आप ज्ञान के रथ से पार करिए तो बड़ी से बड़ी समस्याएं, संभावनाएं भी क्या हो जाती हैं, सॉल्व हो जाती हैं. इफ यू हैव अ नॉलेज एंड विजडम, और इस ज्ञान के रथ पे अगर, आगे मैंने जोड़ा, इस ज्ञान के रथ पे अगर लॉ का सहारा लिया जाए. अब हम अपना नाम नहीं लेंगे क्योंकि हमसे भी बड़े बड़े लोग, दादा लोग हैं. लॉ का सहारा लिया जाए तो और भी आपको राइट एंड रॉन्ग का डिसीजन लेना आसान हो जाता है. क्योंकि लॉ हमारी एब्स्ट्रैक्ट लॉ नहीं है ना, ज्यूरिसप्रूडेंस पढ़ते हो ना, केवल फिक्स रूल्स एंड प्रोसीजर नहीं है, यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी भी है. लॉ में सब सिखाया जाता है आपको. आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िएगा तो वहाँ लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, सब चीज का एक्सप्रेशन, फ्रीडम, जिससे एक आदमी पूरी तरह कंप्लीट हो जाए. हम आदमी की बात कर रहे हैं, लाडली बहना की नहीं, क्योंकि लाडली बहना को तो बहुत प्यार मिल रहा है इसमें, और वो प्यार दे भी रहे हैं सरकार को. ऐसा ऐसा स्कीम निकाल दिए हैं कि हर लड़की 3,000 रुपया. तो लड़का क्या करेगा, घर पे रहे, खाना बनाए, वो 3,000 रुपये कर ले. अब सारे स्कीम किसकी ओर जा रही है साहब? जितना है देखिए, अभी आज प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट पार्लियामेंट में था, पहली ही लाइन था हमारा पूरा फोकस एंड कंसंट्रेशन हमारी बहनों, गरीबों, नहीं गहनों, बहनों, गरीबों और दबे कुचलों के प्रति है. अब बताओ भाई, इसके अलावा रेजिड्यू वाले कहाँ जाएंगे?
घर पे रहेंगे,
घर पे रहे अपना, होम मेकर. तो बड़ा इस समय चल रहा है भैया, क्रॉस वोटिंग हो गई है. महिलाएं घर से निकल के कहीं हम उसको देने जा रहे हैं, और जब पता नहीं किसको दे दी, पता नहीं क्या हो जा रहा है. खैर चलिए, तो वो है कंसेप्ट ऑफ पॉलिटिक्स है. हम लोग 31 पे आ रहे हैं. तो इस जीवन के पथ को किसके थ्रू पार करिए? ज्ञान के रथ से पार करिए और उसमें अगर लॉ का अच्छी तरह चाबुक बना लीजिए, एकदम परफेक्ट लॉ की नॉलेज हो जाए, तो फिर ये रथ में जो है ऑडी का इंजन लग जाएगा। किसका इंजन लग सकता है? और आर्बिट्रेशन की अगर किसी को अच्छी नॉलेज हो जाए ना, दिल्ली में जाइए आप देखिए, वहाँ लॉ फर्म में आर्बिट्रेशन की अगर अच्छी नॉलेज है तो आपका पेमेंट ही अलग होगा। वो तो पर केस पेमेंट होता है ना आर्बिट्रेशन पे। तो हम लोग इसीलिए सोचे कि आर्बिट्रेशन को थोड़ा पढ़ा दें, बाकी जिसको जैसी ज़रूरत होगी अकॉर्डिंगली, और इसमें डीप आप लोग अपना अपना नॉलेज ले सकते हैं। 31 पे आते हैं। एक्चुअली 31 में हमारे मतलब की तो केवल दो सबसेक्शंस हैं, यानी एग्जाम पर्पज से केवल दो सबसेक्शन है, मगर पढ़ना इसको पड़ेगा। स्टार्ट करिए।
सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 31, एन आर्बिट्रल अवार्ड शैल बी मेड इन राइटिंग एंड शैल बी साइन बाय द मेंबर्स ऑफ द आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल।
अभी तो समझिए ना, अवार्ड किसमें होगा? ओरल तो नहीं होगा ना, इन राइटिंग ही होगा, इसको नहीं टिक करना है।
सबसेक्शन 2 फॉर द पर्पजेज ऑफ सबसेक्शन 1 इन आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स विद मोर देन वन आर्बिट्रेटर द सिग्नेचर्स ऑफ द मेजोरिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल शैल बी sufficient so long as the reason for any omitted signature is stated. Subsection 3.
ये इसको टिक कर लीजिएगा। यहाँ कह रहा है अगर एक से ज्यादा आर्बिट्रेटर थे, ऑनलाइन ध्यान से सुनिएगा बेटा, इफ देर आर मोर देन वन आर्बिट्रेटर, तीन थे और अवार्ड आया है, तो क्या तीनों का साइन होना जरूरी है? कह रहा अगर एकाध कोई दिक्कत में है आर्बिट्रेटर, तो मेजॉरिटी वर्ड है, यानी सारे आर्बिट्रेटर का सिग्नेचर की जरूरत नहीं, मेजॉरिटी का अगर अवार्ड पे सिग्नेचर हो जाए और जिनका नहीं हुआ उसके लिए एक्सप्लेनेशन दे दिया जाए तो अवार्ड फाइनल होगा। देखिए सबसे फिर से पढ़िए।
फॉर द पर्पजेज ऑफ सबसेक्शन 1 इन आर्बिट्रल प्रोसीडिंग विद मोर देन वन आर्बिट्रेटर द सिग्नेचर ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द आर्बिट्रेटर आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल शैल बी सफिशियंट सो लॉन्ग एज द रीजन फॉर एनी ओमिटेड सिग्नेचर इज स्टेटेड।
ठीक है।
सबसेक्शन 3, द आर्बिट्रल अवार्ड शैल स्टेट द रीजन अपॉन विच इट इज बेस्ड अनलेस ए द पार्टीज हैव अग्रीड दैट नो रीजन आर टू बी गिवन और बी द अवार्ड इज एन आर्बिट्रल अवार्ड एन ऑन अग्रीड टर्म्स अंडर सेक्शन 30।
देखिए क्या क्या कह रहा है। कह रहा है रीजनड डिसीजन, नेचुरल जस्टिस का सबसे बड़ा क्या फार्मूला है, द डिसीजन मस्ट बी रीजनड वन। ठीक है, यहाँ क्या कह रहा है सेक्शन 31 सबसेक्शन 3, यही कह रहा है कि आर्बिट्रेटर भी जो निर्णय देगा वो क्या दे, रीजन दे, या तो पार्टी कह दे रीजन वीजन देने की जरूरत नहीं, आप स्पीकिंग ऑर्डर दे दो हम लोग फाइनल मान लेंगे। तो जनरली कैसा ऑर्डर आना चाहिए, रीजन, क्योंकि इस आर्बिट्रेशन अवार्ड का क्या होना है, चैलेंज होना है। 34 में क्या हो सकता है, इसको सेट असाइड करने के लिए आप लोग कोर्ट जा सकते हैं। दिस इज व्हाई द ऑर्डर मस्ट बी रीजनड वन। और चलिए
सबसेक्शन 4, द आर्बिट्रल अवार्ड शैल स्टेट इट्स डेट एंड द प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन एज डिटरमाइंड इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 20 एंड द अवार्ड शैल बी डीम्ड टू हैव बीन मेड एट द दैट प्लेस।
ठीक है।
सबसेक्शन 5, After the arbitral award is made, a signed copy shall be delivered to the each party. Subsection 6, the arbitral tribunal may at any time during the arbitral proceeding make an interim arbitral award on any matter which, with respect to which it may make a final arbitral award.
इसको टिक करिए। अब 6 से हमारा काम चालू हुआ। Subsection 6 पे कह रहा है आपसे पूछा जा सकता है कि क्या आर्बिट्रेटर्स इंट्रीम अवार्ड दे सकते हैं। जैसे ना हम लोग पढ़ते हैं ना, इंट्रीम ऑर्डर पहले आता है फिर कोर्ट क्या दे सकती है, फाइनल, तो क्या इंट्रीम अवार्ड भी आ सकता है? तो किस सेक्शन में है ये? 31 सबसेक्शन 6 में कह रहा है आर्बिट्रेटर कैन गिव एन इंट्रीम अवार्ड आल्सो, अंतरिम, इंट्रीम को अंडरलाइन कीजिए, सबसेक्शन 6। ठीक है। 7 इंटरेस्ट
7 स्मॉल ए, अनलेस अदरवाइज अग्रीड बाय द पार्टीज वेयर एंड इन सो फार एज एन आर्बिट्रल अवार्ड इज फॉर द पेमेंट ऑफ मनी द आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल मे इंक्लूड इन द सम फॉर विच द अवार्ड इज मेड इंटरेस्ट एट सच रेट एज इट डीम्स रीजनेबल ऑन द होल और एनी पार्ट ऑफ द मनी फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द पीरियड बिटवीन द डेट ऑन विच द कॉज ऑफ एक्शन अरोज एंड द डेट ऑन विच द अवार्ड इज मेड।
अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि जिस दिन कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ और जिस दिन अवार्ड आया है, जिस दिन कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ और जिस दिन अवार्ड आया, अगर पेमेंट ऑफ मनी का कोई मामला था तो उस पर प्रिंसिपल अमाउंट के साथ ही साथ इंटरेस्ट भी अवार्ड किया जा सकता। कितना इंटरेस्ट बताइए, लिखा नहीं है ना, रिज वर्ड क्या यूज किया है, रिजनेबल, एक बार फिर पढ़ दीजिए देखिए।
Unless otherwise agreed by the parties, where and in so far as an arbitral award is for the payment of money, the arbitral tribunal may include in the sum of which for which the award is made interest at such rate as it deems reasonable on the whole or any part of the money for the whole or any part of the period between the date on which the cause of action arose and the date on which the award is made.
अब तो देखिए, जिस दिन cause of action arise हुआ और जिस दिन award आया है, उस बीच में reasonable कैसा देगा, इंटरेस्ट प्रिंसिपल सम के साथ रिजनेबल देगा। और उसके बाद आगे लिखा है जो और इम्पॉर्टेंट है कि जिस दिन अवार्ड आया और जिस दिन पेमेंट हुआ, एग्जीक्यूशन हुआ, एग्जीक्यूशन में भी समय लगता है ना। मान लीजिए 1 जनवरी को अवार्ड आ गया और पेमेंट होते होते ये 4 दिसंबर हो गया, तो जिस दिन अवार्ड आया और जिस दिन एग्जीक्यूशन हुआ है, उस दिन इंटरेस्ट जो मेन इंटरेस्ट था उसे 2% बढ़ा के बोला जाएगा। अगर उन्होंने 7% कहा होगा उधर, क्योंकि इसमें 7-8 चल रहा होगा ना, तो मानिए 8% वहां बोला, 7% फॉर प्रिंसिपल सम के लिए बोला, कॉज ऑफ एक्शन से अवार्ड तक के लिए, तो कहा जब तक पेमेंट ना हो जाए तब तक के लिए 7+2। देखिए इसी यही पूछा जाता है।
बी, अ सम डायरेक्टेड टू बी पेड बाई एन आर्बिट्रल अवार्ड शैल अनलेस द अवार्ड अदरवाइज डायरेक्ट carry interest at the rate of 2% higher than the current rate of interest prevalent on the date of award from the date of award on to the date of payment।
Date of award से लेकर date of payment, section 34 आप सबको CPC का याद आ रहा होगा, याद आया? तो कोई कहेगा हम पढ़े ही नहीं तो कहां से याद है, एकदम लॉजिकल है, मैं मूर्खता वाली बात ही कर रहा हूं, क्योंकि अगर कोई सीपीसी नहीं पढ़ा है तो मत याद करे, मगर जो पढ़ा है वो याद करे। 34 में यही है इंटरेस्ट, वहां तो 6% दिया। हाँ बेटा,
सर वो 7+2 वाला जो आप बता रहे थे, एक बार बता दे।
अच्छा ठीक है, देखो इसको दिमाग में एकदम खोल के सुनिएगा। दिमाग कैसे खोला जाता है, छेद कर दिया जाए नहीं? कैसे खोलते हैं बेटा दिमाग, हाउ टू ओपन आवर माइंड, पहले तो यही ना चैप्टर हो। नहीं बेटा, योगा वो ना मिंटॉस खाओ, बच्ची सही बता रही है। दिमाग की बत्ती कैसे जलती है, मिंटॉस खाइए, मिंटॉस खाएंगे तो आपका दिमाग का बत्ती जल जाएगा, ऐसा बोलते हैं। ठीक, अवार्ड आया, कॉज ऑफ एक्शन, कॉज ऑफ एक्शन से लेकर और जिस दिन अवार्ड आया, मान लीजिए कॉज ऑफ एक्शन 2015 में चालू हुआ, किस दिन चालू हुआ, 1 जनवरी 2015 को कॉज ऑफ एक्शन आया, उसके बाद मैटर को रेफर कर दिया गया आर्बिट्रेशन को, आर्बिट्रेशन अवार्ड वार्ड आया 2017 में, तो 2017 जनवरी में अवार्ड आया, तो जब अवार्ड आएगा तो कोर्ट कहेगी जो उस समय प्रिवेलेंट चल रहा होगा इंटरेस्ट रेट, कोर्ट कहेगी प्रिंसिपल सम प्लस ये इंटरेस्ट, और फिर कोर्ट उसी में लिख देती है कि जब तक पार्टी पेमेंट नहीं कर देती है, आज की डेट से पेमेंट तक जो भी हमने 7% बोला उससे 2% बढ़ा के, यानी जब तक एग्जीक्यूट नहीं आता तब तक 2% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो 1 जनवरी 2015 से लेकर 2017 तक जब तक अवार्ड आया, मान लीजिए 7% दिया, तो फिर लिखेगा 2017 के बाद जब तक ये पेमेंट अपोजिट पार्टी नहीं कर दे रही है तब तक 7% के साथ 2% एडिशनल आपको देना पड़ेगा, ये एग्जाम में आता है। और आइए,
ये हो गया अब एक्सप्लेनेशन है।
जब 34 में, 31 में दो चीजें थी
सर।
हाँ बेटा,
सर सब प्लस 7 बता दीजिए सर।
सब प्लस 7 क्या है?
अरे ये भी वही तो है।
अच्छा वही है,
हाँ, इंटरेस्ट।
सब प्लस 7 में ना देखो, जब अमाउंट कोई ना पेमेंट ऑफ मनी को लेकर आर्बिट्रेशन है ना, तो वहां पर इंटरेस्ट भी दिया जाता है ना, तो जब प्रिंसिपल सम आपको एडजस्ट किया, कोर्ट ने डिसाइड कर दिया, एक मानिए 1 जनवरी 2015 को कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का कोई मैटर था, उसमें कुछ पेमेंट वेमेंट का था मैटर लेके, उसको आर्बिट्रेशन में रेफर किया गया। आर्बिट्रेशन ने अवार्ड दिया है 1 जनवरी 2017 को। तो अब देखिए 15 से लेकर कॉज ऑफ एक्शन कब अराइज हुआ, 2015, और अवार्ड किस दिन आया, 1 जनवरी 2017। इन दो सालों के लिए तो आर्बिट्रेटर अपने डिस्क्रिशन के हिसाब से इंटरेस्ट पेमेंट कराएगा जो उसको लगे रीजनेबल। उसके बाद जब अवार्ड दे देते हैं तो उसके बाद लिख दिया जाता है कि अब जब पार्टी इस पैसे का जब तक पेमेंट नहीं कर रही है, उतने दिन में जो इंटरेस्ट मिलेगा, जो हमने प्रिंसिपल सम में इंटरेस्ट बताया, उससे 2% ज्यादा। तो अगर 7% उसमें डिसाइड किया गया तो यहां पर कितना मिलेगा, 9% मिलेगा फ्रॉम डेट ऑफ अवार्ड टू द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ मनी। तो डेट ऑफ अवार्ड से पेमेंट ऑफ मनी में 2% एक्स्ट्रा, ये खूब क्वेश्चन पूछा जाता है। 32
सेक्शन 31 कैपिटल ए है,
वो क्या है,
रिजीम फॉर कॉस्ट,
छोड़ दो।
32 है टर्मिनेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स,
मैंडेट कब टर्मिनेट होगा, समाप्त कब होगा, देख लीजिए कब है।
द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग शैल बी टर्मिनेटेड बाय द फाइनल आर्बिट्रल अवार्ड और बाय एन ऑर्डर ऑफ आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल अंडर सबसेक्शन 2।
ठीक है, फाइनल आ जाएगा तो अपने आप ही ट्रिब्यूनल का मैंडेट क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं ना, पानी पी ले तो बताएं क्या बोलते हैं। थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज में भी हम लोग लेते रहते हैं ना, आर्बिट्रेशन का काम कब खत्म होगा, जब आर्बिट्रेशन क्या कर दे, अपना अवार्ड दे दे, इसी बोलते हैं फंक्टस ऑफिशियो ना, फंक्टस ऑफिशियो नाम सुने होंगे ना, व्हेन फंक्शन ऑफ ऑफिस एंड, जब किसी ऑफिस का काम समाप्त हो गया, इसी को बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ फंक्टस ऑफिशियो। फंक्टस ऑफिशियो पूछा जाए किस सेक्शन में, 32। इस पे लिंक को चेक कर लेना बेटा, क्योंकि अब हम पिक्टोग्राफी पे है नहीं। तो फंक्टस ऑफिशियो, फंक्टस ऑफिशियो मीन व्हेन द टास्क ऑफ कोर्ट इज कंप्लीट, कोर्ट ने जजमेंट दे दिया, अब उसका काम क्या हो गया, समाप्त। दिस इज कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ फंक्टस ऑफिशियो। 32 में फंक्टस ऑफिशियो कह रहा कैसे समाप्त होगा, टास्क ऑफ जब अवार्ड आ जाए, फाइनल हो जाए, एंड हो गया, अब आगे कुछ करना शेष नहीं रह गया। और चलिए 33,
सेक्शन 33 करेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ अवार्ड एडिशनल अवार्ड।
अब देखिए 33 और 34 तो पढ़ना पड़ेगा। 33 में है करेक्शन, एक अवार्ड आया और एक पार्टी करी सर ये इसमें कुछ थोड़ा सा आपने गलत लिख दिया है, ये थोड़ा डिफेक्टिव है, तो इसको करेक्ट करिए। तो करेक्शन खुद कौन करेगा, इसे रिव्यू है ना, आप लोग सीपीसी में जब पढ़ेंगे तो इसको बोलते हैं रिव्यू। जब सेक्शन 152 पढ़िएगा सीपीसी में, कौन सा सेक्शन 152 पढ़िएगा, तो वहां लिखा है अर्थमेटिक और क्लेरिकल मिस्टेक के लिए कोर्ट में अप्लाई करिए, जिसने डिग्री पास की है वो अर्थमेटिक और कौन सा क्लेरिकल मिस्टेक वो खुद दूर कर देगी। इसी तरह 33 में है कि अवार्ड आने के बाद अगर पार्टीज को कुछ गड़बड़ लग रही है, कोई क्लेरिकल कोई अर्थमेटिक मिस्टेक है, तो आर्बिट्रेटर से बोलिए विद इन टाइम लिमिट, समय दिया है विद इन टाइम लिमिट, जो भी 30 डेज या जिसका समय है उसमें बोलिए, आर्बिट्रेटर रेक्टिफाई कर देगा। पढ़ दीजिए
सेक्शन
33
करेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ अवार्ड एडिशनल अवार्ड। सबसेक्शन 1 विद इन 30 डेज फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ द आर्बिट्रल अवार्ड अनलेस अनदर पीरियड ऑफ टाइम हैज बीन अग्रीड अपॉन बाय द पार्टीज, ए पार्टी विद नोटिस टू द अदर पार्टी में रिक्वेस्ट द आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल टू करेक्ट एनी कंपटीशन इरर्स एंड एनी क्लरिकल और टाइपोग्राफिकल इरर्स और एनी अदर इरर्स ऑफ अ सिमिलर नेचर अकरिंग इन द अवार्ड। बी इफ सो अग्रीड बाय द पार्टी, द पार्टी विद नोटिस टू द अदर पार्टी मे रिक्वेस्ट द आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल टू गिव एन इंटरप्रिटेशन ऑफ अ स्पेसिफिक पॉइंट और पार्ट ऑफ द अवार्ड। सबसेक्शन 2 If the arbitral tribunal considers the request made under subsection 1 to be justified, it shall make the correction or give the interpretation within 30 days from the receipt of the request, and the interpretation shall form part of the arbitral award.
Yani, agar parties ne apply kiya, sir, kuch clerical arithmetic mistake hai, kuch interpretation ki zarurat hai, clarification ki zarurat hai, to phir party turant apply kare aur opposite party ko notice di jayegi. Dono party aa jaye, आने के बाद आर्बिट्रेटर विद इन 30 डेज उसको क्या कर देगा, क्लेरिफाई कर देगा, अर्थमेटिक मिस्टेक को दूर कर देगा. और चलिए
इसी में सबसेक्शन 4, अनलेस अदरवाइज अग्रीड बाय द पार्टीज, अ पार्टी विद नोटिस टू द अदर पार्टी मे रिक्वेस्ट विद इन 30 डेज फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ द आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल द आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल टू मेक एन एडिशनल आर्बिट्रल अवार्ड एज टू क्लेम presented in the arbitral proceedings but omitted from the arbitral award.
Subsection. ये कह रहा है additional award की बात कर रहा है ना, कह रहा है मान लीजिए arbitration award तो आया पर award में कोई चीज भूल गए, वो कोई claim को adjust करना भूल गए, यानी tribunal जो है कुछ claims के बारे में निर्णय देना भूल गई, तो फिर party apply करें और फिर additional क्या आ जाएगा, मेन अवार्ड के साथ एक एडिशनल अवार्ड भी आ जाएगा कि किसी पॉइंट पे अगर ट्रिब्यूनल भूल गई है तो वो एडिशनल अवार्ड दे सकती है. ठीक है. हाँ, 34
छोड़ दें, बाकी 5, 6, 7
पढ़ दीजिए.
सबसेक्शन 5, इफ द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कंसीडर्स द रिक्वेस्ट मेड अंडर सबसेक्शन 4 टू बी जस्टिफाइड, इट शैल मेक द एडिशनल आर्बिट्रल अवार्ड विद इन 60 डेज फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ सच रिक्वेस्ट. Subsection 6, the arbitral tribunal may extend it if necessary.
360 दिन था. आप लोग देखिए, ट्रिब्यूनल ने करेक्शंस जो किया वो कितने दिन में अपने जजमेंट को अवार्ड को करेक्ट किया है, 30 days, और एडिशनल अवार्ड कितने दिन में, 60 days, क्योंकि थोड़ा समय तो लगेगा ना सोचने समझने, तो 30 days में करेक्शंस कर रही है ट्रिब्यूनल और 60 days में एडिशनल अवार्ड दे रही है. ऑनलाइन बेटा एकदम क्लियर हो रहा है कि नहीं, बोलना. हाँ,
यस सर.
थैंक यू.
यस सर.
एकदम बेटा ठीक, एकदम हाँ ही बोला करो, क्योंकि इसमें ना का कोई स्कोप नहीं है. हाँ.
सबसेक्शन 6, द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में एक्सटेंड इफ नेसेसरी द पीरियड ऑफ टाइम विद इन विच इट शैल मेक अ करेक्शन, गिव एन इंटरप्रिटेशन और मेक एन एडिशनल आर्बिट्रल अवार्ड अंडर सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 5.
अच्छा, देखिए 33 में क्या क्या चीजें थी, थोड़ा सा करेक्ट करिए. देखिए 31 में इंटरेस्ट की हम बात की है. 31 में हमने क्या बताया, कौन कौन साइन करेगा, मेजॉरिटी साइन करेगी ना, रिवाइज करते रहिए. 31 में हमने उनका कौन कौन क्या क्या साइन ऑन करेगा. ठीक है, फिर हम लोग आ गए उसमें इंटरेस्ट की बात की है 31 में. 33 में हम लोगों ने क्या करवा लिया, करेक्शंस. क्या करवाया, करेक्शंस. कैसे करेक्शंस होगा, अगर कोई डिफेक्ट, कोई क्लेरिकल अर्थमेटिक मिस्टेक हो गई है तो अप्लीकेशन देने के बाद 30 डेज में उसको करेक्ट किया जाएगा, और किसी पॉइंट पे ओमिट कर गए तो कितने दिन के बाद अप्लीकेशन के, 60 डेज में एक एडिशनल अवार्ड आ जाएगा. अच्छा, इंट्रीम अवार्ड कहां पर था, देर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंट्रीम अवार्ड एंड एडिशनल अवार्ड. इंट्रीम अवार्ड आपने पढ़ा था 31 का 5 था ना, 6-7 में ना, इंट्रीम अवार्ड तो नहीं होता 6 ना, वो इंट्रीम अवार्ड था. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंट्रीम अवार्ड एंड एडिशनल अवार्ड. एडिशनल अवार्ड तो फाइनल इन नेचर है ना, वो इंट्रीम इन नेचर है, वो ये किस नेचर का है, फाइनल है. तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंट्रीम अवार्ड एंड फाइनल अवार्ड. ठीक है, और चलिए अब आ रहे अपन लोग अब उस टॉपिक पे आ गए जिस टॉपिक की इतने दिन से आप सब चर्चा कर रहे थे, वो है 34 है वो जो अवार्ड आया है. अच्छा, जो अवार्ड आया है वो तो भाई फाइनल है ना, और वो 36 में कहता है, 35 में कहता है फाइनल है, और 36 में कहता है, देखिए एक बार 35 और 36 पहले कर लें.
सेक्शन 35, फाइनलिटी ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड. सब्जेक्ट टू दिस पार्ट एन आर्बिट्रल अवार्ड शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन द पार्टीज एंड पर्संस क्लेमिंग अंडर देम रेस्पेक्टिवली.
36
एनफोर्समेंट. where the time for making an application is set aside, arbitral award under section 34 has expired, then subject to the provisions of subsection 2, such award shall be enforced in accordance with the provisions of the Code of Civil Procedure 1908 in the same manner as if it were a decree of the court.
अब यहाँ थोड़ा देखिए ना, हम लोगों ने तय किया कि साहब हमारा ए और बी का डिस्प्यूट है, ए और बी सीधे चले गए, सी को बना लिया आर्बिट्रेटर, ए और बी ने किसको बना लिया आर्बिट्रेटर, सी को, और सी को बनाया। अभी तक क्या सरकार को कहीं कुछ पता है कि कोई आर्बिट्रेशन हो रहा है? नहीं। ए और बी का क्या था? एक प्राइवेट आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट था, दोनों ने कुछ डिस्प्यूट खड़ा हुआ, दोनों बिजनेसमैन है, दोनों बिजनेसमैन ने किसको अपॉइंट कर लिया? सी को। अब सी ने देख दाख के मैटर को सॉल्व कर दिया। अब मैटर जब सॉल्व हो गया, अवार्ड आ गया, अवार्ड ए के फेवर में आया और बी के अगेंस्ट। बी ने कहा काकल लोगे कागज है, ले जाओ, है ना, ले जाओ, जाओ नाव चलाओ, बारिश हो रही है, इसका कोई इन्फोर्सिबिलिटी नहीं है। तो ऐसा नहीं है, वो जो अवार्ड आया है वो 35 में क्या हो गया, फाइनल। और 36 में, चूंकि देखिए अवार्ड तो एकदम न्यूडम पैक्टम हो जाएगा ना, कोरा कागज हो जाएगा जब तक इसके साथ कोर्ट अंत में लगना ही लगना है। अब कह रहा है 36 में कि ऐसे अवार्ड को अगर सेल्फ एग्जीक्यूट नहीं हो रहा तो ऑर्डर 21 यानी सीपीसी में जाइए और कोर्ट से उस अवार्ड को क्या करवा सकते हैं आप, एग्जीक्यूट। अब कोर्ट अपने हिसाब से एग्जीक्यूशन शुरू करेगी, जेल होल में बंद कर देगी, अटैच करा देगी प्रॉपर्टी, यानी एग्जीक्यूशन कहां से होगा? आर्बिट्रेशन अवार्ड का एग्जीक्यूशन कौन करेगी? आर्बिट्रेटर नहीं करेगा, द एग्जीक्यूशन इज डन बाय कोर्ट। कोर्ट अपनी एग्जीक्यूशन पावर नहीं दे सकती ना, तब तो फिर तो सारा लॉ एंड ऑर्डर ही बिगड़ जाएगा। कुछ पावर जो इनहेरेंट है किसमें, कोर्ट में, एग्जीक्यूट करने की पावर केवल कोर्ट में है। तो सिविल कोर्ट में अब मान लीजिए ए के फेवर में आया, बी के अगेंस्ट आ गया, बी पैसा नहीं दे रहा है, तो ए कैसे वसूले उससे? अब वो जाए सिविल कोर्ट में जिसका ज्यूरिसडिक्शन था वो मैटर का, और वहां ऑर्डर 21 में क्या फाइल करे ऑन द बेसिस ऑफ दिस अवार्ड, कि साहब अवार्ड कॉम्पिटेंट आर्बिट्रेशन ने दिया है, ये देखिए ओरिजिनल आर्बिट्रेशन क्लॉज है, सब कुछ सही है, अब इसको आप एग्जीक्यूट कराइए बी के अगेंस्ट। तो ये जो अवार्ड है ना, इसको डीम्ड डिक्री क्या वो कह रहा है, इसमें 36 में क्या बोला, इट इज ट्रीटेड एज इट वर अ डिक्री। इसको कैसे माना जाएगा, जैसे कि सिविल कोर्ट ने डिक्री के रूप में पास किया। तो ये जो हमारा अवार्ड है वो सिंपल अवार्ड नहीं है, वो डिक्री की तरह फाइनल है, और उसका एग्जीक्यूशन किससे कराओगे, बाय अ कोर्ट। अब आ रहे हैं हम लोग, मान लीजिए एक अवार्ड आया था, अवार्ड से एक पार्टी नाखुश है, या एक पार्टी ने पहले ही आपको 13 में चैलेंज किया था कि आर्बिट्रेटर कॉम्पिटेंट नहीं है, फिर भी प्रोसीडिंग कंटिन्यू रही। तो इन सब मामलों में या मेरिट पे नहीं आया है, कोई पार्टी एग्रीव्ड है, अगर आर्बिट्रेशन अवार्ड से कोई पार्टी एग्रीव्ड है तो वो इस अवार्ड को सेट असाइड करा सकती है। इस अवार्ड को क्या कर सकती है, ये जो तो सेट असाइड कराने का जो मौका है वो किस सेक्शन में दिया गया है, 34। तो जो आर्बिट्रेशन अवार्ड आया है, एनी एग्रीव पार्टी कैन फाइल एन ऑब्जेक्शन टू सेट असाइड सच अवार्ड। अब ये बताओ, 34 को ध्यान से पढ़ो और ये देखो, ये सेट असाइड कहाँ कराने हम जाएं, किस फोरम में जाएं, ऑनलाइन बताओ बेटा, कहाँ पर सेट असाइड कराएंगे आर्बिट्रेशन अवार्ड, कोर्ट में। वी हैव टू फाइल एन ऑब्जेक्शन टू सेट असाइड अंडर सेक्शन 34 इन कोर्ट। कोर्ट कौन सी कोर्ट, सिविल कोर्ट, याद है हम लोग पढ़े थे सब कोई, जहां वर्ड कोर्ट आएगा सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 स्मॉल ई, वेयर एवर द वर्ड कोर्ट अपीयर। तो कोर्ट का मतलब वो कोर्ट, अगर ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन सिविल कोर्ट एक्सरसाइज करती, अरे यानी आर्बिट्रेशन में मैटर ना जाता तो कहां फाइल करते इसको, कोर्ट में ना। तो जिस कोर्ट के पास ट्रायल का ज्यूरिसडिक्शन है उसी कोर्ट में जाओ, इस अवार्ड को क्या करवाओ, सेट असाइड। तो मान लीजिए हम यूपी की बात करें तो यूपी में 5 लाख तक का मामला जूनियर डिवीजन और 5 लाख के ऊपर सीनियर डिवीजन। तो 5 के नीचे का मामला अगर आर्बिट्रेशन ने सॉल्व किया तो कहाँ जाएंगे हम सेट असाइड कराने? जेडी के पास। और अगर 5 से ज्यादा का मामला है तो किसके पास जाएंगे? सिविल जज सीनियर डिवीजन। और वही दिल्ली में हो, अगर दिल्ली का मामला है तो दिल्ली में ज्यूरिसडिक्शन पढ़ लीजिएगा, मेरे ख्याल से 2-4 करोड़ के ऊपर का ज्यूरिसडिक्शन हाई कोर्ट के पास है। कुछ हाई कोर्ट ऐसी हैं, 4 हाई कोर्ट, 3 चार्टर्ड और 1 दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मैड्रास और 1 दिल्ली, इन 4 हाई कोर्ट के पास ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन यानी सिविल जज की तरह ट्रायल करती है। एक प्रॉपर अमाउंट के ऊपर का मैटर, वैल्यूएशन के ऊपर का मैटर सीधे कहाँ फाइल होता है? इसीलिए जब दिल्ली में प्रैक्टिस करो तो बड़ा फायदा है। क्यों? क्योंकि आप ये कड़कड़ डूंगा 30,000 इसमें भी सिविल कोर्ट की ट्रायल कर सकते हैं, और आप बड़ा मैटर पा गए तो कहाँ चले जाओ? सीधे हाई कोर्ट में। ट्रायल कौन करती है वहाँ? आप ज्यूरिसडिक्शन नेट पे डाल के देखना, किसी को है ज्यूरिसडिक्शन का अंदाजा? कुछ करोड़ के ऊपर है शायद, जिला जज को 1 करोड़ और 4 करोड़ के ऊपर है ना, 4 करोड़ के ऊपर आप देखिएगा तो दिल्ली में डायरेक्ट मैटर कहाँ फाइल होता है। तो यहाँ कह रहा है बस यही समझना है कि किस कोर्ट में सेट असाइड करने जाएं, तो जिस कोर्ट में वो मैटर ट्रायल के लिए जाता उस कोर्ट में जाओ। और इंटरनेशनल कमर्शियल अवार्ड को सेट असाइड कराना हो तो कहाँ जाए? हाई कोर्ट। डोमेस्टिक अवार्ड में वहां जाओ जहां उसका ट्रायल होता। और अगर इंटरनेशनल कमर्शियल अवार्ड को सेट असाइड करना तो कहां जाना पड़ेगा? जिस हाई कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन, उत्तर प्रदेश का कहां जाएगा? इलाहाबाद हाई कोर्ट। दिल्ली का कहां जाएगा? दिल्ली हाई कोर्ट। ठीक है, महाराष्ट्र का हम बताएंगे नहीं, चलो आओ
20 लाख से 2 करोड़।
अच्छा, 20 लाख से 2 करोड़ है देखिए दिल्ली में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, 2 करोड़ के ऊपर हाई कोर्ट यानी 2। अच्छा, उत्तर प्रदेश में चाहे 100 करोड़ का मैटर हो किसके पास जाएगा? यहाँ सिविल जज सीनियर बहुत पावरफुल है यहाँ का सिविल जज, पर दिल्ली में 2 करोड़ से कितना है?
20 लाख से 2 करोड़।
20 लाख से 2 करोड़ 2 करोड़ के ऊपर का मैटर कहाँ जाएगा? अब बताओ, क्या दिल्ली में कोई मकान, छोटा सा मकान 2 करोड़ से कम होगा? नहीं भाई। एक वहाँ दिल्ली में अगर 1,000 स्क्वायर फीट का भी कोई मकान है तो उसकी वैल्यूएशन कितनी होगी? 2 करोड़ के ऊपर। यानी सारा मैटर डिस्प्यूट कहाँ जाता है? ट्रायल के लिए वहाँ की
झोपड़ी वाला केस जाता होगा,
सब जितना बड़ा है छोटे 54-58 वाला केस इनके पास आता है छोटी वाली कोर्ट पे, इसीलिए लाइक डीजीएस। दिल्ली जाना हो सीधे हाई कोर्ट जज, ट्रायल का एचजीएस चल जाएगा, मगर वो इन लोगों के लिए अभिशाप हो जाएगा ना। अभी इसको यह आए उसको 4 टॉफी दे, हम कहते जाओ एचजीएस बनो, तो क्या कहेगा? ये 4 टॉफी रखो, कहेगा 4 हमसे ले लीजिए, अपना वरदान वापस लीजिए, है ना। अब लगन का लगन बीता जा रहा है, आप कह रहे हैं कि बारिश अलग हो रही है ना। चलो हाँ, कई लोग तो पूछा मैं क्या हुआ, बड़ा अफसोस, कहें क्या हमारे तरह का आदमी, यार जिसके यहाँ शादी होगी तुम्हारे यहाँ है, तुम्हारा कोई नेवता है? दोनों ही नहीं ना, वहाँ काज ऑफ एक्शन है ना, कोई नेवता है ना, कहीं किसी के यहाँ शादी है, फिर भी परेशान है, कह रहे शादी वाले क्या करेंगे? अरे वो तो अपना कर ही लेंगे, जो डिसाइड कर रखा वो रुकेगा, वो तो पहले ही तय कर लिया होगा सब, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग किस पे आ रहे हैं? 34 ग्राउंड टू सेट असाइड द अवार्ड। हाँ बेटा,
सर डिफरेंट ज्यूरिसडिक्शन का होगा तो फिर हाईकोर्ट डिसाइड करेगी कौन सा ज्यूरिसडिक्शन में,
वो तो सीपीसी से चलो हाईकोर्ट डिसाइड कर देगी। अगर देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन तो कौन डिसाइड करे? हाई कोर्ट। तो सेट असाइड करने में हम लोग अपील में नहीं जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा व्हाट आई वांट टू से। 34 की अप्लीकेशन अपील नहीं है, ये अप्लीकेशन टू सेट असाइड। अप्लीकेशन कहां जाएगी? कोर्ट में। अब इस अप्लीकेशन में जो भी डिसीजन आएगा उसकी आप अपील करना 37 में। तो लेट अस स्टार्ट 34। हाँ, कितना बजा
अभी? हो रहा 6:51।
नहीं, कोशिश करेंगे, खत्म करेंगे अभी।
चैप्टर 7 रिकोर्स अगेंस्ट आर्बिट्रल अवार्ड, सेक्शन 34 एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड आर्बिट्रल अवार्ड, सबसेक्शन 1। रिकोर्स टू अ कोर्ट अगेंस्ट एन आर्बिट्रल अवार्ड मे बी मेड ओनली बाय एन एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड सच अवार्ड इन अकॉर्डेंस विद सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 3।
देखिए कहां जाएंगे सेट असाइड कराने इस अवार्ड को? कोर्ट। और किसके थ्रू जाएंगे? अप्लीकेशन इन अ कोर्ट, ठीक है, वो भी समय है अभी। हाँ,
सब सेक्शन टू, एन आर्बिट्रल अवार्ड मे बी सेट असाइड बाय द कोर्ट ओनली इफ ए द पार्टी मेकिंग द एप्लीकेशन एस्टेब्लिशेज ऑन द बेसिस ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल दैट फर्स्ट ए पार्टी वॉज अंडर सम इनकैपेसिटी और सेकेंड एन आर्बिट्रेशन।
पहला क्या है, ग्राउंड ऑफ, देखिए सेटिंग असाइड है ये ग्राउंड, पहला पार्टीज इनकैपेसिटी में थी, कोई माइनर विनर के अगेंस्ट अवार्ड आ गया। दूसरा आर्बिट्रेटर खुद इनकॉम्पिटेंट थे। दूसरा देखिए, हाँ,
द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इज नॉट वैलिड अंडर द लॉ टू विच द पार्टीज हैव सब्जेक्टेड इट फेलिंग एनी इंडिकेशन देयर ऑन अंडर द लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स।
आराम से, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट क्या है, वो खुद ही इनवैलिड। तो पहला क्या हुआ, पार्टी इनकॉम्पिटेंट, अवार्ड जो आया उसमें पार्टी क्या है, इनकॉम्पिटेंट। दूसरा आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट कैसा है, इनवैलिड। तीसरा देखिए,
The party making the application was not given proper notice of the appointment of the arbitrator or of the arbitral proceedings or was otherwise unable to present his case.
Ex-party pass हो गया, उसको सूचना ही नहीं थी। Restoration इसको बोलेंगे ना, यानी वो पार्टी कह रहा हमें मालूम ही नहीं चला कब ये आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर लिए, कब प्रोसीजर करा दिए, हमें तो कुछ पता ही नहीं चला, हमारे खिलाफ सीधे एग्जीक्यूशन ला रहे हैं। तो पार्टी कहेगी कि हमें इसकी कोई नोटिस नहीं मिली। हाँ,
फोर्थ, द आर्बिट्रल अवार्ड डील्स विद द डिस्प्यूट नॉट कंटम्पलेटेड बाई और नॉट फॉलिंग विद इन द टर्म्स ऑफ द सबमिशन टू आर्बिट्रेशन और इट कंटेन्स डिसीजन्स ऑन मैटर्स बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द सबमिशन टू आर्बिट्रेशन प्रोवाइडेड दैट इफ द डिसीजन ऑन मैटर सबमिटेड टू आर्बिट्रेशन कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम दो नॉट सो सबमिटेड ओनली दैट पार्ट ऑफ द आर्बिट्रल अवार्ड विच कंटेन्स डिसीजन्स ऑन मैटर्स नॉट सबमिटेड टू आर्बिट्रेशन मे बी सेट असाइड।
कह रहा आर्बिट्रेटर ने, ट्रिब्यूनल ने वो मैटर सॉल्व कर दिया जो उनको सबमिट ही नहीं किया गया था। देखिए आर्बिट्रेशन कितने मैटर का करेंगे जो पार्टी ने आपको सबमिट किया है, आप उसके बियॉन्ड नहीं जाएंगे, और आर्बिट्रेटर और भी मैटर सॉल्व कर डाले, तो अगर आप बियॉन्ड योर ज्यूरिसडिक्शन जाएंगे तो वो मैटर क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। और यहाँ पर फिर आया कहा डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी लगाइए, अगर अवार्ड जो दिया गया वो उस पर भी दिया गया है जिस पे उसको सबमिट किया गया था और उसके बाहर के भी दिया गया, तो सबमिशन वाला वैलिड, आउटसाइड ज्यूरिसडिक्शन वाला वॉइड। हाँ,
फाइव, द कंपोजिशन ऑफ द आर्बिट्रल टर्मिनल और द आर्बिट्रल प्रोसीजर वॉज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द एग्रीमेंट ऑफ द पार्टीज अनलेस सच एग्रीमेंट वॉज इन कंफ्लिक्ट विद द प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट फ्रॉम विच द पार्टीज कैन नॉट डेरोगेट और Failing such agreement was not in accordance with this part. Or B, the court finds that first, the subject matter of the dispute is not capable of settlement by arbitration under the law for the timing in force. Or second, the arbitral award is in conflict with the public policy of India.
Public policy of India. Arbitration ने जो award दिया किसके against है? Public policy. Public policy defined नहीं है कहीं. बस इसको 23 of the Indian कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डील किया गया, पब्लिक पॉलिसी, लोक नीति। तो जो भी उन्होंने अवार्ड दिया है वो लॉ के अगेंस्ट नहीं है, मगर किसके अगेंस्ट है, अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी है, तो वो भी कोर्ट सेट असाइड कर देगी। ठीक है,
एक्सप्लेनेशन
छोड़ दीजिए,
छोड़ दें, एक्सप्लेनेशन टू भी छोड़ देते हैं,
इसको पढ़ लीजिएगा, आप लोग खुद पढ़िएगा इसको। हाँ,
नेक्स्ट, टू ए, एन आर्बिट्रल अवार्ड arising out of arbitrations other than international commercial arbitrations may also be set aside by the court if the court finds that the award is vitiated by patent illegality appearing on the face of the award provided that an award shall not be set aside merely on the grounds of an erroneous application of the law or by reappreciation of evidence. Subsection 3.
हाँ, समय देख लीजिए किसमें दिया है।
An application for set aside may not be made after 3 months have elapsed from the date on which party making that application had received the arbitral award or if a request had been made under section 33 from the date on which that request had been disposed of by the arbitral tribunal.
कितने दिन में set aside करने का limitation period दिया है? 3 महीना। यानी कितने दिन तक execution नहीं होगा? 3 महीने तक कोर्ट वेट करेगी, क्योंकि 3 महीने तक कोई भी पार्टी चाहे तो इस पे चैलेंज कर सकती है। तो इसको अंडरलाइन कीजिएगा, 3 मंथ्स, जिस दिन आर्बिट्रेशन अवार्ड आया है उसके 3 महीने तक एग्जीक्यूशन नहीं होगा, क्योंकि उसने दिन तक सेट असाइड कराने की अभी भी आपके पास मौका है। और चलिए, तो 34 बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए, और प्री के लिए भी हर चीज के लिए कि किस ग्राउंड पे कहाँ होगा। देखिए
तीन चीज है इसमें,
इसमें होगा भाई
लंबा है यार ये तो। प्रोवाइडेड द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट द एप्लिकेंट वाज प्रिवेंटेड बाय सफिशिएंट कॉज फ्रॉम मेकिंग द एप्लीकेशन विद इन द सेट पीरियड ऑफ 3 months, इट मे एंटरटेन द एप्लीकेशन विद इन अ फर्दर पीरियड ऑफ 30 days बट नॉट देयर आफ्टर।
देखिए इसमें क्या कह रहा है, अगर 3 महीने में आप नहीं जा पाए तो कंडोनेशन आप डिले डालिए। क्या डाला जाता है, क्योंकि अभी आपको एक दो दिन बाद लिमिटेशन पीरियड एक्ट पढ़ाएंगे। लिमिटेशन एक्ट में सेक्शन 5 है, सेक्शन 5 कहता है कि अगर लिमिटेशन पीरियड बीत गया उसके बाद आपको सूट फाइल करना हो तो आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा, सेक्शन 5 की एप्लीकेशन देना पड़ेगा फॉर कंडोनेशन ऑफ डिले। साहब हम इनकेपेबल थे, फिजिकली इल थे, मेंटली इल थे, जो कुछ है सब बताना पड़ता है उसमें। ठीक, यहां कह रहा है अगर 3 महीने के भीतर आप सेट असाइड नहीं करा पाए, कुछ प्रॉब्लम थी, फिजिकल या मेंटल इनेबिलिटी थी, डिसेबिलिटी थी, कुछ भी थी, तो आपको फिर मौका दे रहा है कि उसी कोर्ट से कितने दिन तक और आपको भी मिलना है, 30 days। इसीलिए एक बार DGS में क्वेश्चन आया था कि सेक्शन 34 में कंडोनेशन ऑफ डिले के लिए क्या लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन 5 लगेगा, नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि इसमें तो सेल्फ कंटेनिंग प्रोविजन है ना, इसमें तो खुद ही प्रोविजन दे दिया कि अगर 3 महीने में आप नहीं जाओगे तो, यानी सेक्शन 34 के लिए, आई रिपीट क्वेश्चन मत गड़बड़ाइएगा, आर्बिट्रेशन एक्ट पे क्या लिमिटेशन एक्ट अप्लाई होता है, लगता है हाँ या ना, लगेगा ना, 43 है ना, देखो सेक्शन कौन सा है, देखो सब कुछ टुकुर टुकुर देखो, देखो ध्यान से 41 है, 43 है, देखो 43 है ना। देखिए प्री के लिए क्वेश्चन, वेदर लिमिटेशन एक्ट विल अप्लाई ऑन आर्बिट्रेशन एक्ट, यस, मगर 34 में सेट असाइड करने के लिए अगर 3 महीना बीत गया तो क्या लिमिटेशन एक्ट से जाएंगे, नहीं। क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि इसमें खुद ही उसका रेमेडी, व्हेन ऑलरेडी रेमेडी इज गिवन इन योर एक्ट, व्हाई टू मूव ऑन लिमिटेशन एक्ट फॉर कंडोनेशन ऑफ डिले। दिस इज वाई द लिमिटेशन एक्ट विल नॉट अप्लाई ऑन सेक्शन 34 बट अप्लाई ऑन ऑल द प्रोविजंस ऑफ आर्बिट्रेशन। हाँ और पढ़िए,
सब सेक्शन 4 ऑन रिसिप्ट ऑफ एन एप्लीकेशन अंडर सब सेक्शन 1 द कोर्ट मे वेयर इट इज अप्रोप्रिएट एंड इट इज सो रिक्वेस्टेड बाय अ पार्टी एडजर्न द प्रोसीडिंग फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम determined by it in order to give the arbitral tribunal an opportunity to resume the arbitral proceedings or to take such other action as in the opinion of arbitral tribunal will eliminate the grounds for setting aside the arbitral award. Subsection 5, an application to this section shall be filed by a party only after issuing a prior notice of the other party, and such application shall be accompanied by an affidavit by the applicant endorsing compliance with the said requirement. Or last has 6, an application under this section shall be disposed of expeditiously and in any event within a period of 1 year from the date on which notice referred to in subsection 5 is served upon the other party.
एक साल में, कितना साल, ये जो सेट असाइड करने के लिए आप कोर्ट में जा रहे हैं, ये जो एप्लीकेशन आई है सेट असाइड करने की, ये एप्लीकेशन का डिस्पोजल कितने दिन में कोर्ट करेगी, 1 year। यहाँ 12 month नहीं दिया, बड़ा खुराफा था। देखिए यहाँ 1 साल लिखा और अभी आप सेक्शन 29 में पढ़े थे कितना था, 12 month। यही तो पूरा खेल है एग्जाम का, यहाँ 1 year है, कोर्ट के लिए 1 साल का और आर्बिट्रेटर के लिए कितने में कहा, 12 month में। तो सेक्शन 34 बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एक अवार्ड आया है उससे आप, वैसे अवार्ड वो फाइनल है और डिक्री की तरह इन्फोर्स होगा, मगर 3 महीने के भीतर चाहे तो अगर कोई आपको ऑब्जेक्शन है तो कोर्ट में जाकर उसको सेट असाइड कराइए। ग्राउंड्स दिए हैं, केवल उतना ही ग्राउंड है, एरर ऑफ लॉ वगैरह नहीं चलेगा। देखो हमने एक पढ़ाया है ना, इन्होंने पढ़ के दिया ना प्रोविजो, एरर ऑफ लॉ इज नो ग्राउंड। आप कहें सर वो लॉ नहीं, अरे आर्बिट्रेशन में लॉ कहाँ लगाना है, पढ़े हो ना, उसके प्रोसीजर्स कैसे होंगे, वो तो सिंपल प्रोसीजर होगा जो पार्टी डिसाइड करेगी। तो एरर ऑफ लॉ इज नो ग्राउंड टू सेट असाइड द आर्बिट्रेशन क्लास, कहीं देखिए लिखा था, कहीं था, आप देखिए प्रोविजो में था, सबसेक्शन 2 का प्रोविजो था ना या 3 का था ना, कोई था देखो एरर ऑफ लॉ इज नो,
के लिए तो 33 सेक्शन दे रखा है ना,
कौन सा?
वो आर्बिट्रेटर खुद करेगा ना।
हाँ
एरर्स के लिए तो 33 वो खुद ही कर रहा है आर्बिट्रेटर, ये तो कोर्ट में सेटल,
ये कोर्ट से हो रहा है ठीक है। वो 33 में कौन डिसाइड कर रहा है आर्बिट्रेटर, और 34 में कौन डिसाइड कर रहा है? इसमें देखिए एक जगह था, देखिए प्रोविजो था ना, कौन सा 34 का 2 या 3 था ना, उसका प्रोविजो नहीं है। एरर ऑफ लॉ इज नो ग्राउंड,
सब प्रोविजो ऑफ सेक्शन सब क्लॉज 2A है,
2A है ना।
प्रोवाइडेड एन अवार्ड शैल नॉट बी सेट असाइड मेरली ऑन द ग्राउंड ऑफ एन एरोनियस एप्लीकेशन ऑफ द लॉ और बाय रीएप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस।
ये प्री क्लियरेंट डालिएगा, एरोनियस एप्लीकेशन ऑफ 2A है, बहुत ही माइन्यूटली इसको पढ़ना बड़ी आसान नहीं है, ये छोटी बात नहीं है जो कोई पढ़ा रहा है ना, बड़ी बात है ना। 2A टिक कर लीजिएगा, ये प्री में आता है कि एरोनियस एप्लीकेशन ऑफ लॉ या री अप्रिशिएशन ऑफ एविडेंस या रॉन्ग अप्रिशिएशन ऑफ एविडेंस इज नो ग्राउंड टू सेट असाइड द अवार्ड। ये जो ग्राउंड ऑफ सेटिंग असाइड द अवार्ड है, चार ही पांच है, प्री में खूब पूछा जाता है। एरोनियस application of law is no ground to set aside award, इसको underline कीजिए, highlight करिए ठीक है। 35 अपने लोगों ने पढ़ लिया था ना, 36 पढ़ लिया था, अब आइए अपील।
सर
हाँ बेटा,
सर एक बार ये लाइन रिपीट कर दीजिए।
अच्छा बस इतना कहीं नोट कर लीजिए, 34 का सबसेक्शन 2 का ए है, कहता है erroneous application of law, आर्बिट्रेशन ने गलत नियम बनाया, आर्बिट्रेशन ने जो अवार्ड दिया उसमें लॉ गलत अप्लाई किया, एरोनियस एप्लीकेशन ऑफ लॉ और री अप्रिशिएशन ऑफ एविडेंस, इन दोनों के ग्राउंड पर 34 अप्लाई नहीं। 34 कब लगेगा? जब सब सेक्शन 2 के वो चार पांच ग्राउंड है ना, ए बी सी डी ना, केवल तभी लगेगा। ये आप कह के सेट असाइड कराने आ रहे हैं, सर आर्बिट्रेटर को तो लॉ आती नहीं थी, तो कहीं लिखा है क्या लॉ जरूरत आनी चाहिए? आर्बिट्रेटर को लॉ आने की जरूरत नहीं है। तो रॉन्ग एप्लीकेशन ऑफ लॉ, एरोनियस एप्लीकेशन ऑफ लॉ इज नो ग्राउंड टू सेट असाइड द आर्बिट्रेशन अवार्ड, ये जरूर नोट कर लीजिएगा। आपने में भी है ना टिक, भी टिक कर लो राजू। बस एक आध और सेक्शन, ज्यादा मत घबराई, ऑनलाइन तो खैर कोई घबराहट है ही नहीं, सब घर ही पे हैं।
7-5 हो गया
है ना। अब इसके बाद कौन सा आ रहा है? अच्छा एक दिन और चलेगा क्या?
हाँ।
पढ़ा देना पूरा।
हाँ।
तो रुक जाइएगा, 34 35 36 हो गया, इसके बाद एक दिन और डिमांड चाहेंगे ट्यूसडे का, और हम ही ने मांगा, हम ही ने ग्रांट भी दे दिया, ड्यूअल कैपेसिटी इसको कहते हैं ना, आर्बिट्रेटर है। तो एक दिन का और आप सबसे समय मांग रहे हैं, कल जो आर्बिट्रेशन में बचा खुचा है रेजिड्यू उसको कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद अगर कल नई लिमिटेशन तो परसों से क्या हो जाएगा, परसों से 2 दिन आई थिंक उसमें भी लगता है लिमिटेशन, क्योंकि पहली बार पढ़ा रहा है तो जो भी समय लगेगा लगेगा, आई डोंट नो। तो आज की क्लास हम लोग यहीं स्टॉप करते हैं, आपको मौका दे रहे हैं ढेर सारे क्वेश्चंस यहाँ तक के सॉल्व करिए, कल बचे हुए चीज़ों को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच सबने।